ओम शांति। आप सभी भी मुस्कुराते हुए प्यार से बोलिए ओम शांति। विश्व परिवर्तन की नींव सशक्त महिला इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का हम शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। तो आप सभी का उद्घाटन सत्र में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आपके स्वागत में मैं कहूंगी, सजी आपसे महफिल है, आप सभी प्रभु का श्रृंगार कर रहे दिल से आपका कोटि कोटि स्वागत बारंबार। और आज के मंच को सुशोभित करने वाली सशक्त महिलाओं को मैं अनुरोध कर रही हूँ, हमारी परम आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, परम आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, परम आदरणीय सुदेश दीदी जी, आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी, बहन अरुणा सांगेवार जी, बहन अंजना पवार जी, बहन डॉक्टर मनीषा जो दिल्ली से पधारे हैं, माला बहन, आप सबसे अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हम कोई भी शुभ कार्य का प्रारंभ प्रभु को समर्पण करके करते हैं। जब प्रभु हमारे साथ शामिल होते हैं तो निश्चित ही वो कार्य सफल होता है। तो हम कुछ मिनट अपने मन को प्रभु स्मृति में स्थिर करेंगे। मैं हमारे आदरणीय ब्रजमोहन भाई साहब भी हमारे मध्य पधारे हैं, जोरदार करतल ध्वनि से हम भाई साहब का स्वागत करते हैं। और मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे सभी मंचस्थ अतिथियों का गुलदस्ते एवं बैचेस से स्वागत अभिनंदन करेंगे और आप सभी करतल ध्वनि से सहयोग देते रहेंगे। आदरणीय सुदेश दीदी जी, तालियां बजाने से एक्यूप्रेशर होता है, हमारा हेल्थ अच्छा रहता है, इसीलिए जोरदार तालियां बजाते रहे। आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, चंद्रिका दीदी जी, ब्रजमोहन भाई साहब, बहन अंजना पवार जी, बहन अरुणा सांगेवार जी, माला बहन, आज का सम्मेलन का विषय है विश्व परिवर्तन की नींव सशक्त महिला। सशक्त महिला हम किसे कहेंगे? वो महिला जो अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक है, वो महिला जिसमें आत्मविश्वास है, जो शिक्षित है, जो आत्मनिर्भर है, जो अपने जीवन के स्वतंत्र निर्णय ले सकती है, यानी अपने जीवन के निर्णयों को लेने में वो सक्षम है, जीवन में आने वाली जो भी चुनौतियां हैं उनका वो सामना सफलतापूर्वक कर सकती है, समाज में जो भी रूढ़ियां हैं, कुरीतियां हैं, उनके बंधनों से भी वो अपने को मुक्त कर सकती हैं। ऐसी महिला को हम सशक्त महिला कहेंगे। हमारी जो आज की सभा है वो सशक्त महिलाओं की ही सभा है, और निश्चित रूप से हम सभी सक्षम हैं स्वयं के जीवन में परिवर्तन लाने को, अपने परिवार में परिवर्तन लाने को, अपने समाज में, और फिर इस विश्व को परिवर्तन करने के लिए। लेकिन परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से ही होती है। हम देखते हैं आज परिवारों की और समाज की क्या दशा है। आज घर घर में स्वार्थ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, वैर भावना है, एक दो के प्रति विश्वास नहीं है, या हम कहें ईमानदारी नहीं है, सच्चाई नहीं है, और इसी कारण हमने समाज को, इस विश्व को कलयुग बना दिया है। तो यदि हम परिवर्तन लाना चाहते हैं विश्व में, तो पहले ये परिवर्तन की शुरुआत तो हमें स्वयं से करनी होगी। परिवार ही समाज की इकाई है, और समाज ही देश की इकाई है, और देशों से मिलकर के ही ये विश्व बनता है। तो कैसे हम ये परिवर्तन लाएंगे, ये तो आज हमारे मध्य बहुत ही विद्वान वक्ताएं उपस्थित हैं, वो इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन मैं स्वागत की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मधुर वाणी ग्रुप, जो कल भी आपके सामने उपस्थित हुआ था, वो अपनी खुशी के उमंग को आपके स्वागत के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हमारे समक्ष आ रहे हैं। सतीश भाई, गोविंद भाई, नितिन भाई, आप यहाँ के समर्पित भाई हैं। कला संस्कृति विभाग में आप अपना सक्रिय योगदान देते हैं। विश्व परिवर्तन की नींव है सशक्त महिला हरदम। स्वागतम, शुभ स्वागतम, वंदे मातरम। तो आप सबकी वंदना करते हुए आप ये स्वागत गीत हम सबके समक्ष रखेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की ये महफिल, ये जलसा, ये उत्सव देखकर ऐसा लगता है कि संसार के उद्धार का आ गया मौसम, शिव शक्ति के अवतार का आ गया मौसम। आप आई, सशक्त महिलाएं आई, तो परमात्मा भी आपको कहता है वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप अपना अभिनंदन स्वीकार। करतल ध्वनि के साथ दोनों हाथ ऊपर करके अपना अभिनंदन करें।
विश्व परिवर्तन की नींव है, विश्व परिवर्तन की नींव है, सशक्त महिला हरदम। स्वागतम, शुभ स्वागतम, वंदे मातरम। आप आई तो आ गया, आप आई तो आ गया, बरसात का ये मौसम। स्वागतम, शत स्वागतम, वंदे मातरम। स्वागतम, शुभ स्वागतम, वंदे मातरम। के हाथों में ही संस्कृति की पतवार है, नारी के सम्मान की नारी जिम्मेदार है। अपने जीते जीत जगत में अपने हारे हार है, स्वयं को सशक्त बनाने का।
वाह वाह।
स्वयं को सशक्त बनाने का आ गया ये मौसम, स्वागतम शत स्वागतम वंदे मातरम, स्वागतम शुभ स्वागतम वंदे मातरम। La 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 he 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 ha 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 ha। आत्म परिवर्तन से होगा विश्व का परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन से संसार का परिवर्तन, दृष्टि परिवर्तन से ही है सृष्टि का परिवर्तन, आत्म सशक्तिकरण का है, आत्म सशक्तिकरण का है। आ गया ये मौसम, स्वागतम शत स्वागतम वंदे मातरम, स्वागतम शुभ स्वागतम वंदे मातरम।
एक भी ताली नहीं थी, बहुत खुशी के पल हैं।
शिव से योग लगा करके शिव शक्ति बन जाइए, राजयोग से कमजोरी पर अपकारी बन जाइए, दिव्य गुणों को धारण करके देवियां बन जाइए, संसार के उद्धार का।
बाबा।
संसार के उद्धार का अब आ गया ये मौसम, स्वागतम शत स्वागतम वंदे मातरम, स्वागतम शुभ स्वागतम वंदे मातरम, स्वागतम शत स्वागतम वंदे मातरम, स्वागतम शुभ स्वागतम वंदे मातरम, स्वागतम शत स्वागतम वंदे मातरम, स्वागतम शुभ स्वागतम वंदे मातरम।
बहुत सुंदर शब्दों में न सिर्फ स्वागत किया लेकिन साथ में सशक्त बनाने की प्रेरणाएं भी हमें गीत के माध्यम से दी मधुर वाणी ने, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम जोरदार करतल ध्वनि से मधुर वाणी का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे मध्य श्रीमती अंजना पवार जी, आप वाइस चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। और स्वागत की इस कड़ी को पुनः आगे बढ़ाते हुए अपने पैरों के घुंघरुओं की झनकार से आपका स्वागत करने आ रही हैं उल्लास नगर की कुमारी दिया, जया और कृष।
महिला प्रभा शांति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के महिला प्रभाग की तरफ से आप सभी का ज्ञान सरोवर प्रांगण में हार्दिक स्वागत है।
मंदिर सजे मूरत से, फूलों से सजे गुलशन, मंदिर सजे मूरत से, फूलों से सजे गुलशन, अंबर सजे तारों से, आप से ये आंगन,
नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफला क्रिया। कहते हैं जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है, और इसके विपरीत जहाँ नारी को अपमानित किया जाता है वहाँ सब कार्य असफल होते हैं। अंग्रेजी में भी नारी को शी और पुरुष को ही कहा जाता है। एस का मतलब सुपीरियर है, यानी नारी सुपीरियर महान है। हे नारी, अपनी महानता को पहचान, अपनी आंतरिक सुंदरता को जान।
ज्ञान है जिसके हाथ में कमान, लक्ष्य पर ही ध्यान है, जो चक्रवात की लहर के सर पे चढ़ के झूम ले, के प्रश्न चिन्ह तोड़ कर जो उत्तरों को झूम ले। और बर्फ दोनों साथ लेके चलती है, जो तीर में बदलती है, जो ढाल में भी ढलती है, जो एक पल में अग्नि है, जो एक पल में नीर है, जो पत्थरों की स्याही से खींची हुई लकीर है।
वो आ गई जो सिर पे दो नदी का रुख भी मोड़ेगी, जो ले लिया है एक बार प्रणव करके छोड़ेगी, लाख उसके इम्तिहान ले ले कोई भी नजर,
न दर्द की उसे फिकर न चोट का ही कोई डर।
बहुत सुंदर प्रस्तुति कुमारी दिया, कुमारी तीनों कुमारियों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम हम सबके सामने प्रस्तुत किया। और हमारी आदरणीय सुदेश दीदी, भाई साहब चक्रधारी दीदी आपको सम्मानित कर रहे हैं। फिर से एक बार जोरदार कल्तव ध्वनि से हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारी संस्कृति में नारी के शक्ति स्वरूप की अवधारणा है और उन्हें असुर संघारणी कहा गया है कि जब जब असुरों का उत्पात बढ़ता है तो वो देवी के रूप में अवतार लेती हैं और उन असुरों का संहार करती है। तो ये कोई अलग से असुरों की बात नहीं है, लेकिन जो हमारे अंतर मन के असुर हैं, अंतर मन की बुराइयां हैं, उनको दैवी शक्तियों से संहार करने का प्रतीक वो दिखाया गया है। तो अभी इस सम्मेलन के मुख्य उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं हमारी परम आदरणीय चंद्रिका दीदी को। आप वर्तमान में युवा प्रभाग की उपाध्यक्ष हैं, कला एवं संस्कृति प्रभाग की आप अध्यक्षा हैं, अहमदाबाद के महादेवनगर सब जोन के लगभग 33 सेवा केंद्रों की आप कुशल संचालिका हैं, आप मधुबन यहाँ हेडक्वार्टर मैनेजमेंट कमेटी के भी सदस्या हैं। आपने करीब 55 वर्षों से अपने जीवन को इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। आपकी विशेषता है कि आप सदा ही सेवाओं में नवीनता और रचनात्मकता लाते रहते हैं। काफी सेवाएं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में प्रारंभ करने का श्रेय आपको जाता है, जैसे राजयोग शिविरों का आयोजन करना, कुमारियों के लिए हॉस्टल खोला और उनके लिए ट्रेनिंग या प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ करना, यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो ट्रैफिक कंट्रोल की शुरुआत का विचार भी आपका रहा। आपने युवाओं के उत्थान के लिए समय प्रति समय अनेक अभियान निकाले हैं, अभी मैं विस्तार से उसकी चर्चा करूंगी तो बहुत समय हो जाएगा। तो आपने अभी ही पिछले 2 वर्ष पहले ही मेरा भारत स्वर्णिम भारत अभियान, जो बस में प्रदर्शनी अभियान की तरह था, लगभग 3 वर्षों तक पूरे भारत में निकाला और विद्यार्थियों के लिए स्कूल्स में वो विद्यार्थियों में मूल्यों के प्रति जागृति आए उसके लिए टच द लाइट कार्यक्रम भी आपने चलाया। आपको माननीय श्री सुंदर सिंह जी, जो गुजरात के गवर्नर रहे, उन्होंने 2002 में आपको नेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन यूथ थ्रू स्पिरिचुअल वे ये प्रदान किया। आपके लिए मैं कहूंगी, आपकी वाणी मिटा देती है हर तम, आपके मुस्कान हर लेती है हर एक दिल का गम। उमंग भर देती है आपकी दृष्टि हर दिल में, किसी फरिश्ते से आप नहीं हैं कम। आदरणीय चंद्रिका बहन जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम प्रिय परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में, ज्ञान सरोवर के सुंदर मनोरम्य प्राकृतिक सौंदर्य के बीच और आज के हमारे परम सम्माननीय चेयरपर्सन भ्राता ब्रिज मोहन भाई जी, ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर परमादरणीय सुदेश देवी जी, महिला विंग के चेयरपर्सन चक्रधारी दीदी जी और अन्य सर्व मंचस्थ अति मूल्यवान अपने आप में विशिष्ट ऐसी प्रतिभाओं को मैं दिल से अभिनंदन देती, अभिवादन करती, धन्यवाद करते हैं। आज का महिला सम्मेलन का ये उद्घाटन सत्र है और पूरे देश भर में से पधारे हुए सभा में उपस्थित हमारी बहुमूल्यवान शक्ति स्वरूपा महिलावा और भाई, आप सभी का भी आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत सहृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का विषय ही हमें कुछ दिशा निर्देश दे रहा है, दो बातों का। वर्तमान विश्व के परिवर्तन की कुछ ताती आवश्यकता नजर आ रही है और उसका आधार महिला ही हो सकती है और इसीलिए बहुत ही चिंतन पूर्वक इस विषय को आज रखा है कि विश्व परिवर्तन का आधार स्तंभ नारी शक्ति महिला है। जब हम पूरे विश्व को देखते हैं, विश्व की प्राकृतिक रचना को देखते हैं और इस प्राकृतिक रचना के बीच जब मनुष्य आत्माओं को देखते हैं और जिसमें विशेष रूप से कुदरत की रचना नर और नारी के रूप में देखते हैं, तो ये साहजिक रीति ही स्वीकार्य है कि परमात्मा तो क्रिएटर है इस विश्व क्रिएशन के, परंतु मनुष्य जीवन को जन्म देने वाली अगर कोई है तो वो नारी है, स्त्री शक्ति है। इसीलिए एक तो ईश्वर को माता के रूप में, क्रिएटर के रूप में कहा गया, लेकिन दूसरा स्त्री शक्ति में क्रिएशन की ताकत है, रचना की शक्ति है, जो कुदरत की देन है, जो अद्भुत ताकत है, और इसीलिए नारी शक्ति हमेशा ही सम्मान के पात्र हैं, माननीय हैं, पूजनीय हैं। और इसीलिए नारी शक्ति से ये अपेक्षा रखी जाती है कि अगर नारी सशक्त बन जाए, महिलाओं में परिवर्तन आ जाए, तो उस परिवर्तन के द्वारा सारा संसार बदल सकता है, क्योंकि माँ बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के साथ साथ वो उनमें संस्कार भी बढ़ती है। अधिकतर देखा जाता है जैसे माता पिता के संस्कार होते हैं, वो संस्कार बच्चों में देखने में आते हैं। और अगर संस्कारों में बदलाव लाना है तो वो भी माँ ही कर सकती है। और इसीलिए कहा, नारी तू नारायणी। तो आज के इस विषय के ऊपर बहुत ही प्रखर वक्ताएं कुछ कहने वाले हैं, परंतु मैं तो वर्तमान जो परिस्थिति है उसको सब कुछ जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ऐसा टेक इट ग्रांटेड करके मैं आगे की ओर बढ़ना चाहती हूं कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कौन सा कदम उठाया जाए कि जिससे महिलाओं की जो वर्तमान परिस्थिति है, महिलाओं के लिए वर्तमान जितनी शिकायतें हैं, जितने प्रलोभन हैं, जितनी चैलेंजेस हैं, उस सभी से महिला ऊपर उठ करके एक शिव शक्ति के रूप में, एक नारी शक्ति के रूप में, एक जगत जननी के रूप में अपने व्यक्तित्व को निखार दे पाए। और जिस व्यक्तित्व से केवल उसका दर्शन, उनकी शुभ भावनाएं, उनके आशीर्वाद विश्व परिवर्तन के कार्य में एक महत्वपूर्ण रोल बजा सके। किसी वृक्ष को पुनर्जीवन देना हो तो उसके बीज की ओर ध्यान दिया जाता है, टाल टालियों को या वृक्षों को पालन न देने से वो वृक्ष नवपल्लवित नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार एक नारी के जीवन रूपी वृक्ष के पर हमें सोचना होगा, क्योंकि जीवन भी एक वृक्ष है जिस वृक्ष की बहुत शाखाएं हैं, जिसके व्यक्तित्व के बहुत पत्ते हैं। स्त्री नारी जिनकी शारीरिक रचना पुरुष से भिन्न है, तो पहले मुझे ये कहना चाहिए कि आजकल जो बहनों के अंदर पुरुष समक्ष सम रहने की, उसके जैसे अधिकार प्राप्त करने की, उनकी कॉम्पिटिशन करने की, ये एक जो रीस पैदा हुई है, मैं उस रीस को, मैं उस कॉम्पिटिशन को किसी भी हालत में अप्रिशिएट नहीं करती हूं। क्योंकि ये सोचना अपनी शक्ति से नीचे उतरने की बात है। एक स्त्री माँ है, बहन है, बेटी है, जीवन संजीवनी है, हर हाल में उसका पद ऊंचा है, हर हाल में उसकी पोजीशन श्रेष्ठ है, और उस पोजीशन से नीचे उतर के वो अपने को एक पुरुष समकक्ष पता नहीं क्या चाहिए, हुद्दा चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए समझ में नहीं आता है। आज बहनों के जीवन में एम्पावरमेंट के नाम पर बहुत गलत दौड़, रेस, कंपटीशन है, जिससे कभी भी एम्पावरमेंट नहीं हो सकता है। एम्पावरमेंट के लिए ये समझना होगा कि वास्तव में मैं कौन हूं, मेरी वास्तविकता क्या है, और तब आता है बहुमुखी परिवर्तन व्यक्तित्व में लाने का, जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, ये सभी प्रकार का सशक्तिकरण एक व्यक्ति को, एक महिला को पूर्ण नारी के रूप में एस्टैब्लिश कर सकता है। वो कैसे हो सकता है? बहुत सीधी सी बात है, अगर अभी मेरी इस शरीर से आत्मा निकल जाए, मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। जिसका अस्तित्व है, जो व्यक्तित्व है, वो इस शरीर में काम करने वाली आत्मा है, और उस आत्मा को जानने से ही मनुष्य जीवन का बीज आत्मा है, और आत्मा को जानने से ही आत्मिक शक्तियों को हम अनुभव कर सकते हैं, आत्मिक शक्तियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी हम अपने शरीर को केवल देखते हैं, तो शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, ये 5 ही तत्व जड़ है। जड़ का सोचने से स्वयं में वो जड़ता आती है, चेतना खत्म हो जाती है, और ये हुआ है पूरी मानव जात के साथ, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, लेकिन ये अज्ञानता ने हमारे में जड़ता लाई है, और इस जड़ता ने हमारे व्यक्तित्व को पशुतुल्य व्यक्तित्व कर दिया है। उसमें से हमें आज का विश्व कलयुग है, अगर हमें सशक्त करके बनाना है तो सतयुग के सिवाय और कुछ हो नहीं सकता है, उसका दूसरा है। अगर मुझे इस विश्व को सतयुगी विश्व में बदलना हो तो पहले इस धरती पर देव मानवों की जरूरत है, देवी देवताओं की जरूरत है, और वो देवी देवताओं को इस धरती पर अवतरित करने के लिए, इसी प्रकार के सशक्तिकरण को अवतरित करना पड़ेगा, और वो संभव है। आज से 88 वर्ष पहले हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा निराकार सर्वशक्तिवान ने हम सभी की दिल की आवाज को सुन करके एक सामान्य शरीर माध्यम को लेकर के और नई रचना के लिए विश्व पिता ब्रह्मा पिता का नाम दे करके इस कार्य का शुभारंभ किया, और मुझे कहते हुए बड़ा गौरव हो रहा है कि आज इस विश्वविद्यालय में 45,000 ब्रह्मा कुमारी बहने जिन्हों का जीवन संपूर्ण ब्रह्मचर्य युक्त है, जिन्हों के जीवन का लक्ष्य केवल विश्व की सेवा है, जो विश्व पिता के आदेश पर हर कदम उठाते हैं, ऐसे मूल्यवान रत्नों को भगवान ने तैयार किया है और इस विश्वविद्यालय में लाखों ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन को नारी सशक्तिकरण का एक मिसाल बनाया है, एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। तो उसकी शुरुआत कैसे हो? आप और हम सभी के जीवन के दो आधार हैं। इस शरीर को चलाने के लिए ब्रीदिंग, श्वासोश्वास, अगर हमारा श्वासोश्वास खत्म तो हमारा जीवन खत्म। और हमारे आत्मा के लिए इस चक्र में जीने के लिए, काम करने के लिए अगर कोई शक्ति है तो वो है स्मृति शक्ति, वो है याद शक्ति। स्मृति शक्ति के आधार पर ही मनुष्य अपने जीवन की गाड़ी को चलाता है। अगर उसकी स्मृति चली जाए तो उसे पागल कहा जाता है, वो अपने अस्तित्व को टिका नहीं सकता है। ये स्मृति शक्ति क्या है और ये स्मृति शक्ति का पूर्ण रूप क्या है? स्मृति याद सामान्य शब्द है, लेकिन वो स्मृति जब परम की साथ कनेक्ट होती है, परमात्मा को अपना परम पिता समझते हैं और पिता के तुल्य स्वयं को महसूस करते हैं कि परमात्मा मेरे पिता हैं, मैं उनका बच्चा हूं, जैसा मेरा बाप है वैसा मैं हूं, ये है स्मृति की पराकाष्ठा जिसे राजयोग कहा जाता है। और उस राजयोग के द्वारा व्यक्तित्व के सभी पहलू अपनी पूर्णता में पहुंच जाते हैं। सबसे पहली व्यक्तित्व का आधार है मानसिकता। हमारा मन किस दिशा में सोचता है, हमारा मन क्या सोचता है, हमारा मन क्या करने के लिए प्रेरित होता है, जिसके लिए कहते हैं जैसा संकल्प वैसे सृष्टि, या संकल्प से ही सृष्टि बनती है। अगर एक महिला एक संकल्प कर ले कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, इस शरीर को चलाने वाली चेतना हूं और मैं परमात्मा शिव की शक्ति हूं और मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं, ये मेरी मानसिक शक्ति है, तो उनका मानसिक स्वस्थ पूर्ण पराकाष्ठा पर पहुंच सकता है। विस्तार का समय नहीं है, केवल टिप्स दे रही हूं। अब आप सबको मालूम है कि मन की सीधी असर शरीर पर जाती है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब चाहे जग उजियारा होए। अगर मैं मन से ये सोचती हूं कि मैं हेल्दी हूं, मैं सशक्त हूं, मैं निरोगी हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, और मैं अपने शरीर को ऐसा अनुभव भी करती हूँ और शरीर को ऐसा रखने के लिए अपने डेली रूटीन के अंदर एक्सरसाइज को, मेडिटेशन को, पूरी दिनचर्या को समय के साथ उचित रूपी सेट करते हो तो मेरा स्वास्थ्य सुंदर हो सकता है। आध्यात्मिक व्यक्तित्व स्वयं को आत्मा परमात्मा की संतान समझने से अनुभव कर सकते हैं और सामाजिक और पारिवारिक व्यक्तित्व, अगर हम ये समझे कि जैसे ये शरीर को बॉडी कहते हैं और उसका हर एक अंग एक दो को मदद करे तो शरीर अच्छा चलता है। ये यूनिवर्स एक बॉडी है और इस यूनिवर्स का मैं बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ, इसीलिए मुझे संसार के हर अच्छे कार्य के लिए कोऑपरेशन देना है, सहयोग करना है, ऐसा एक सामाजिक अपना शक्तिशाली सोच हो तो सब प्रकार का व्यक्तित्व अपनी पूर्ण मात्रा में प्रकट होगा। मैं आप सभी के प्रति ये शुभाशा व्यक्त करती हूँ कि आपने इस बात को अच्छी तरह से समझा है कि व्यक्ति के परिवर्तन से, स्वयं के परिवर्तन से, खुद मेरे ही परिवर्तन से ये विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा ही। ओम शांति।
अपनी ओजस्वी वाणी में हमें बहुत सुंदर मार्गदर्शन आदरणीय चक्रधारी दीदी जी ने प्रदान किया, आपका बहुत बहुत थैंक्स। हम अपने परिवर्तन की शुरुआत अपने बच्चों को में भी वो परिवर्तन लाएं। कहा जैसे कि माँ सृजन करता है तो बच्चों को संस्कार भी देती है और वही फिर हमारे देश का भविष्य है। अगर बच्चों में श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन 10 वर्ष की आयु तक कर दिया जाए ना, जब बच्चा एक कच्ची मिट्टी के समान होता है, जैसे कहते हैं कि कच्ची मिट्टी को कुम्हार जो आकार देना चाहे वो दे देता है, ऐसे ही उस आयु में जो संस्कार बच्चों में रोपित किए जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि माँ बालक की प्रथम शिक्षिका है, प्रथम गुरु है। अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो दो कुल को रोशन करती है। तो ये संस्कार जो हैं वो एक श्रेष्ठ नागरिक हम अपने देश को दे रहे हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं कहीं ना कहीं उनके पीछे उनकी माँ का हाथ रहा है। महात्मा गांधी जी ने भी अपने जो आत्मकथा लिखी है उसमें इस बात को स्वीकार किया है कि मेरी भारत की आजादी में जो योगदान रहा उसमें मेरी जो चारित्रिक दृढ़ता रही, जो मेरी सत्यता रही, वो उसमें कहाँ ना कहाँ मेरी माँ की प्रेरणा थी। पूरी कहानी तो बहुत लंबी है और अभी हमारे जो भी विद्वान वक्ता हैं उनसे हम सुनते हैं, तो अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती डॉक्टर मनीषा गंधेवार। आप दिल्ली से पधारे हैं, आप सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हैं, 25 सालों का आपका अनुभव है और आप ESIC हॉस्पिटल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, यानी महिलाओं को स्वास्थ्य देने की सेवा आप वर्षों से प्रदान कर रहे हैं, जिनके लिए मैं कहूंगी काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब जी लेते हैं, यहाँ तुम जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो आपका जीवन तो अनेक महिलाओं के लिए प्रेरणा है। तो अभी हम आपके उद्गार सुनेंगे डॉक्टर मनीषा जी।
ओम शांति। आदरणीय दादी जी, चक्रधारी दीदी जी, सुदेश दीदी जी, ब्रिजमोहन भाई जी और सभी आदिति जो आज आए हैं उनको मेरा बहुत दिल से अभिवादन है। और मैं मुझे अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ आज कि जो मुझे ये मंच पे और ये विषय पे बात करने के लिए मौका मिला है। अभी मैं आप सबको एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि इसमें से कितनी महिलाएं हैं जो अपने आप को सशक्त समझ रही है। आप एक एक जो हाथ उठाइए जो अपने आप को सशक्त समझ रही है। वेरी गुड। अभी मुझे ये बताइए हम सशक्त किस बात पे समझ आए। मे बी आप लोग स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए आपने धारण किया है इसके लिए वो शक्ति है आपके पास। बट बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिला वो ऐसे समझती है कि मैं बहुत पढ़ लिखी हूँ, मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप को अच्छे से संभाल कर सकती हूँ। ये सब चीज़ें हैं वो आजकल की महिलाओं में उनको सशक्त एम्पावरमेंट बनाने के पहले उनको कहीं ना कहीं दौर पे एक गलत रास्ते पे लेके जा रही है। जैसे चंद्रिका बहन ने बताया कि हम पुरुषों से तुलना कर रहे हैं कि हम उनसे कैसे बराबरी करें, पर जबकि भगवान ने नारी को एक ऑलरेडी वरदान दिया है कि हम उनसे, हर सोल डिफरेंट है, ना वो नारी है ना वो नर है, बट हमने क्या किया है, हमने ये भागा दौड़ में हमने बहुत सारा, हम अपने आप को मेल से कंपैरिजन करने की बहुत कोशिश की है। अब मैं छोटा सा आपको एक मेरी खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैं 25 साल से ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट करके काम कर रही हूँ। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ और मैं मुंबई में थी ESIC हॉस्पिटल में एज ए प्रोफेसर और मेरा ट्रांसफर हो गया बिहार में, भीटा करके जगह थी, वहां पे ESIC ने नया मेडिकल कॉलेज खोला और वहां पे मेरा ट्रांसफर हो गया। जैसे वो अभी मैं एचओडी, आई एम प्रोफेशनली मैं इतनी अच्छी हूँ, घर पे मेरी जिम्मेदारियां थी, मेरे सास ससुर जो 80 की उम्र में थी, मेरे दो बच्चे, मेरे पति, मेरे देर, ये सब जिम्मेदारी थी। तो जब ये मेरे समझ में आया कि अभी मैं बम्बई छोड़ के बिहार भीटा मैं कैसे जा पाऊंगी और जाके मैं कैसे, मुझे पता नहीं था कि वापस मैं कब लौटूंगी, क्या करूंगी, बहुत सारे सवाल मेरे मन में आ रहे थे कि क्या करूं मैं, छोड़ दूं ये जॉब मेरा जो इतने साल से मैं कर रही हूं, क्या करूं मैं। बट हमारी बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो हम जॉब भी तो नहीं छोड़ सकते हैं। और उस टाइम पे मुझे मौका आया और उस टाइम से मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ गई और जो आंतरिक शक्ति थी वो मुझे वहां से मिल गई और मैंने अपने आप को इतना सशक्त बनाया कि मैंने वो पूरा दौर मेरा बहुत अच्छी तरह से काटा। अभी हम कहां गिर रहे हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, महिलाएं से बजाय जो बच्चियां हैं, जो एडोलेसेंट गर्ल है, एक छोटा सा और एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैं ओपीडी में बैठी थी और एक कॉलेज गोइंग गर्ल आई और ये जो बात है वो 15 साल पहले की है और वो आई मेरे पास, उसने अपने कॉलेज बैग से दो गोलियां निकाली और मुझे पूछने लगी, मैडम मैं आपको, मैं पेशेंट करके नहीं आई हूं लेकिन मैं आपको ये बात पूछना चाहती हूँ, क्या ये गोलियां मैं बार बार लेने से मुझे कुछ नुकसान हो सकता है क्या। मैं हैरान हो गई। आप सोच सकते हो गोलियां क्या थी, वो थी आई पील्स। तो मैंने बोला, बेटा तुमको ये गोलियां किसने दी। कुछ नहीं, मेडिकल शॉप से मैंने ले ली। मेडिकल शॉप से? ये गोली तो आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन कोई नहीं देगा। नहीं नहीं मैडम, ये तो खुलेआम मिलती है। मैंने बोला अच्छा तुम्हें पता है ये तुम क्यों लेती हो? तो मैडम वो क्या है ना, हमारे यहाँ पे मेरे जो फ्रेंड्स हैं सब हैं, हर एक के बॉयफ्रेंड हैं, सो वो हमें अपना अपना, नहीं तो फिर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो कोई मेरे साथ बात नहीं करेगा। मैं बहुत हैरान हो गई। सो ये जो पीयर प्रेशर है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? मतलब बच्चियां ये भी नहीं समझ पा रही है कि हम अपने आप का कितना नुकसान कर रहे हैं। बट इस सब में जिम्मेदार कौन है? हम महिलाएं, क्योंकि शायद उसके माँ ने उसे ठीक से बताया नहीं होगा कि क्या होता है, हमारे ये सब होता है। जब बच्चे का पहली बार जब उनका मासिक चालू होता है वो एक दौर उसके लिए बहुत नाजुक रहता है, और वो दौर में माँ को अपनी बच्ची के लिए बहुत नाजुक तरीके से उसे हैंडल करना रहता है, बिकॉज उसके इमोशंस में उसकी भावना इतनी ऊपर नीचे चढ़ती रहती है कि उसको उस दौर में संभालना बहुत जरूरी रहता है। और वो दौर है, उस दौर पे ना ही शारीरिक बट इमोशनल सपोर्ट, और उसके साथ ही हम स्पिरिचुअल नॉलेज अगर वो बच्ची में देंगे तो बच्ची, मुझे लगता है वो सशक्त नारी का बीज उसी टाइम पे हम डाल सकते हैं, और आगे की जो जनरेशन है वो सही मायने में सशक्त बन सकती है। बिकॉज भगवान ने जो नारी को जो वरदान दिया है, जो उसके गर्भ में वो अपना जो बीज है पूरा 9 मंथ्स रखती है, 9 महीने, और वो 9 महीने में हम समझते हैं कि हाँ हमें ये अच्छा खाना चाहिए, हमें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें ठीक से सोना चाहिए, हमें अपना ख्याल करना चाहिए, ये सब हम सब अच्छे से करते हैं, सिर्फ एक चीज हम नहीं सिखाते हैं, वो चीज है हमें क्या सोचना चाहिए। उस वक्त हम जो अपनी कर्मेंद्रिया से है वो हमें क्या कर्म करना चाहिए, हम जो देखते हैं सुनते हैं पढ़ते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हम जो सोचते हैं, उस हर चीज का इफेक्ट वो जो सोल है उसके गर्भ में उसके ऊपर होता है। और शायद ये भारत में बहुत पहले से हमने जाना था उसको गर्भ संस्कार, वो गर्भ संस्कार में जो अभिमन्यु, जो हम प्राचीन में ही से पता था कि जो है पहले गीता पढ़ी जाती थी, जो माँ है वो प्रेग्नेंट है, पहले जैसे जॉइंट फैमिली रहती थी, जो बुजुर्ग महिलाएं रहती थी वो उनका ख्याल रखती थी ये सब, बट अभी जो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है सब कुछ बिखर गया है, उन्हें पता ही नहीं रहता है कि हमें क्या करना चाहिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। जब सब पहली बार जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जस्ट खत्म किया था तो जो प्रेग्नेंट महिला है ना बहुत खुशी खुशी आती थी, लेकिन गए 10-15 साल से मैं देख रही हूँ जो प्रेग्नेंसी करके आती है वो बहुत स्ट्रेसफुल रहती है, उन्हें समझता ही नहीं है, उन्हें ऐसे स्ट्रेस लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अभी मैं कैसे संभालूंगी, मैं मेरा करियर कैसे करूंगी, मैं मेरे फैमिली कैसे संभालूंगी, मैं मेरा बच्चे को कैसे करूंगी, पूरी तरह से वो कंफ्यूज रहती है और पूरा स्ट्रेस एंजाइटी लेके वो चलती है। अभी आप सोचिए अगर वो स्ट्रेस एंजाइटी वो पूरा 9 महीना अगर वो अपने साथ लेके जाएगी तो जो गर्भ में है जो सोल है उसके ऊपर क्या बीतती होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो भी सोच रहे हैं जो भी कर रहे हैं ये हमें सोचना है कि मेरा एक एक सोच और एक एक कर्म ये जो मैं अपने साथ ले रही हूँ उसके ऊपर उसका इफेक्ट है। बिकॉज जो इंसान बाद में 20-30 के साल बनने वाला है उसका बीज उसके गर्भ में है, तो उसे अपनी बहुत इससे खबरदार रहना चाहिए, विथ अवेयरनेस उसे अवेयर रहना चाहिए, बहुत कॉन्शियसली उसे हर चीज वो 9 मंथ्स में करनी चाहिए। तो यहाँ पे है, और उस वजह से क्या हो रहा है वो पूरी कंफ्यूज रहती है, स्ट्रेस एंजाइटी लेके ले चल रही है, और उस वजह से काफ़ी सारी मिसकैरेज हो रहे हैं। बहुत है कि जो है फर्स्ट पहले 3 महीने में उनको ब्लीडिंग चालू होता है, फिर उनको पेट में दर्द रहता है। एक्चुअली प्रेगनेंसी जो है ना, ये बहुत नैसर्गिक बात है, वहाँ उसमें हमें जो हम कर रहे हैं वो हमें कार्य चालू रखना पड़ता है। बट जो है महिला है आजकल की, वो इतनी कंफ्यूज रहती है कि वो समझ ही नहीं पाती, थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो रेस्ट ले लेती है। वैसा नहीं है, उन्हें हर चीज पे सशक्त होना है, हर चीज पे उन्हें ये। सो यहाँ पे है कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो मुझे ऐसे लगता है जो बालिका स्वरूप में है, और उस टाइम पे अगर हम हमारी बेटियों को उस टाइम पे हम ये स्पिरिचुअल नॉलेज को एक्सपोज करेंगे तो ये बहुत सही तरीका रहेगा। और WHO ने भी बोला है व्हाट इज अ हेल्थ, हेल्थ बोलते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड वन मोर इट हैज बीन एडेड, स्पिरिचुअल हेल्थ। सो हमें एक नारी को इस सभी तरह से हमें उसे सशक्त करना है, और जब हम सशक्त होंगे ये हमें आज से, ये हम आज सबको ये लेके जाना है कि मैं मेरे साथ, मैं तो सशक्त बनूंगी ही बनूंगी, बट मेरे साथ ना ही मेरी मेरी परिवार की जो महिलाएं हैं, मेरे आजू बाजू में जो महिलाएं हैं, मेरी शहर की महिलाएं हैं, उन सबको मैं कुछ ना कुछ करके थोड़ा सा मेरा योगदान देके उनको ये सशक्त महिला के लिए बहुत बहुत उनको मैं मोटिवेट करूंगी। धन्यवाद। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ परमपिता परमात्मा के लिए, और मेरी शिल्पा दीदी जिनने से मैंने जो निमित्त बनी है मुझे इस मार्ग में पे लेने के लिए, शुक्रिया।
थैंक यू डॉक्टर मनीषा जी, एज ए डॉक्टर आपने हमें अवेयरनेस दी कैसे अपनी बेटियों को भी समय देना है, नहीं तो वो फिर अपने फ्रेंड्स के संग में आकर के गलत रास्ते पर गलत दवाओं के प्रभाव में आ सकती हैं। आज देखने में आता है कि जो महिलाएं कार्य करती हैं, ज़्यादातर लेडीज अब काम भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, तो उनको अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता है। बच्चों को वो सुविधाएं साधन तो दे देते हैं लेकिन समय नहीं देते हैं, और अगर थोड़ा बहुत समय हमें मिलता भी है तो वो हमारा मीडिया में यानी मोबाइल में या टीवी में चला जाता है। लेकिन बच्चों को समय देकर के जब हम गाइड करते हैं क्या गलत है क्या सही है, ऐसा क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, और वो भी एक दोस्त की तरह, जब हम उन्हें सही मार्गदर्शन देते हैं समय देते हुए प्यार से धीरज से उनको समझाते हैं तो निश्चित रूप से वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। और अब हमारे अगले वक्ता हैं हमारी परम आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, जो महिला प्रभाग की अध्यक्षा हैं, महिला प्रभाग के सभी अभियान सभी सेमिनार या सभी कार्यक्रम आपके मार्गदर्शन में ही किए जाते हैं। आप दिल्ली शक्तिनगर से संबंधित सेवा केंद्रों के भी संचालिका हैं, दिल्ली जोन के भी मैनेजमेंट कमेटी की आप मुख्य सदस्या हैं, और इसके अलावा रशिया और उसके पूर्व में वह जब USSR था उससे जो अनेक देश बने, उन सभी देशों में जो भी अपने सेवा केंद्र संचालित होते हैं यूक्रेन बेलारूस आदि में लगभग 50 से भी अधिक सेवा केंद्र हैं, उन सेवा केंद्रों का भी निर्देशन आप करते हैं। आप 1952 में विद्यालय के संपर्क में आईं, उस समय आप विद्यार्थी थे, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में ग्रेजुएशन किया और तुरंत अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में आपने समर्पण किया। समर्पण के पश्चात आप यहाँ के लगभग जो भी विद्यालय की गतिविधियाँ होती रही, विशेष करके सम्मेलन या जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनमें आपकी सक्रिय भूमिका रहती है। अपनी ज्ञानामृत पत्रिका जो मासिक पत्रिका है उसमें भी आपने लेख और लघु कथाओं के रूप में योगदान दिया है। आदरणीय चक्रधारी दीदी जी के लिए मैं कहूंगी, सोने सी चमक आप में, हीरों सी दमक आप में, जो कोई आपके सानिध्य में आए वो प्रेम आनंद की लहरों में लहरा जाए।
ओम शांति। आपने बहुत सुंदर मौका दिया कि विभिन्न स्थानों से इस स्थल पर उपस्थित हुए मंचासीन मेरे आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन जी, मेरी राजयोगिनी बहने तथा अपने अपने स्फीयर की विदुषी महिलाएं व मेरी आदरणीय बहनों। अभी अभी मंच सचिव ने जब विदेश की बात कही तो मुझे एकदम विदेश की एक बात याद आ गई। हमारे श्री विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड राजयोगिनी दादी जानकी जी ने एक बार रशिया में विजिट किया और विजिट के दूसरे ही दिन मुझे कहा कि चक्रधारी मुझे यहाँ के दो तीन परिवारों में लेकर चलो। मैंने कहा दादी जी हम तो कभी जा नहीं पाए व्यस्तता के कारण और ये तो बड़े खुश हो जाएंगे कि आते ही दादी जी हमारे घर में आ गए, लेकिन मुझे आप बता सकेंगे कि आप परिवारों में क्यों जाना चाहते हैं? तो दादी जी ने यही कहा कि परिवार की धुरी महिला होती, लेकिन महिला एक समाज का अभिन्न अंग है। मैं जिस देश में सेवा करने के लिए आई हूँ उस देश की सेवा मैं तभी कर सकती हूँ जब मुझे ये पता चले कि यहाँ के परिवार किस हालात में जीवन व्यतीत करते। तो मैं ऐसा कहूंगी कि महिलाएं परिवार का एक ऐसा महान पिलर है जिसके इर्द गिर्द पूरा दायरा घूमता है, वो इस प्रकार एक महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए। वैसे भी किसी भी वस्तु की मजबूती को देखना हो तो उसकी नींव को देखा जाता है कि उसकी नींव कितनी मजबूत है। एक पौधा लगाते हैं थोड़ा थोड़ा बड़ा होने ही लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी जड़ों को मजबूत करता है ताकि वो विशाल होकर हवा वर्षा अथवा किसी प्रकार के भी नेचुरल कैलिमिटीज का मुकाबला कर सकेगा। ठीक इसी प्रकार जब किसी भवन का हम निर्माण करते हैं तो भवन निर्माण में उसकी नींव की तरफ विशेष अटेंशन दिया जाता है। नींव उसकी मजबूत होनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की भी कोई बाढ़ आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई भूकंप आ जाए तो मकान जल्दी से धराशायी ना हो जाए। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि हम यहाँ विश्व परिवर्तन की बात करते हैं। विश्व परिवर्तन में भी विशेष कहा गया कि विश्व परिवर्तन की नींव सशक्त महिलाएं। आप सब क्या समझते हैं, क्या आज इस विश्व में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं? आज वो परिवर्तन की आवश्यकता है जो जन जन सुखी होना चाहता है, शांत होना चाहता है, जीवन को आनंदमय जीवन जीना चाहता है उसके लिए आज आवश्यकता है नींव को बड़ा मजबूत होने की, क्योंकि विश्व परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो उसकी संस्कृति के निर्माण की बात है। संस्कृति संबंधों से और संबंधों के संस्कारों से, रहन सहन से, खान पान से और चरित्र से कहलाती है। और नींव इसकी महिलाएं हैं। महिला समाज की दूरी होने के कारण अनंत काल से बच्चों के कार्य में, बच्चों के जीवन में महिलाएं उनके उत्थान के लिए बहुत कुछ करती आई हैं। अगर बच्चा जन्म लेता है तो पिता जन्म होने के बाद अपने काम पर चला जाता है, लेकिन महिला उस बच्चे की रेख देख के लिए कितना समय देती है, उसे बोलना सिखाती है, खाना सिखाती है, बैठना सिखाती है, चलना सिखाती है, हर प्रकार के संस्कार उसे देती है। ये बहुत बड़ी बात है कि महिला गर्भ में ही बच्चों के संस्कारों पर बहुत अटेंशन देती है कि बच्चों के संस्कार श्रेष्ठ होने चाहिए। इसलिए आज हमारे विद्यालय में भी गर्भ संस्कार विशेष एक लेसन बना है जो गर्भवती महिलाओं को बहुत पहले से ही देना शुरू किया जाता है, ताकि गर्भ से बच्चा जब पैदा हो तो संस्कारों को लेकर के आए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि गर्भवती महिला ही नहीं, लेकिन सशक्त महिला किसे कहेंगे जो अपने परिवर्तन से, अपने जीवन के दृष्टांत से अपने परिवार में परिवर्तन लाए। जिसका बड़ा सुंदर एग्जाम्पल हमारे पास एक सशक्त महिला का है और बड़ा फेमस है, थॉमस अल्वा एडिसन। आप सबने शायद ये कहानी सुनी हुई होगी, किस प्रकार ये बच्चा अपने स्कूल में खामोश बैठा रहता था, टीचर पढ़ाता था लेकिन उसका पढ़ाई में इतना अटेंशन नहीं रहता था। टीचर काफी सावधान करता था लेकिन वो सावधान नहीं होता था, वो कोई अपने ही विचारों में खोया रहता था। और ऐसे खोए हुए विचार वाले बच्चे ने एक दिन क्या किया, देखा कि ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं ये पक्षी, और उड़ान भरते ऊंची और कहां से कहां चले जाते। हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सूप पीते हैं, हम तो उड़ान नहीं भर सकते। तो बच्चा बुद्धि में बहुत कुछ सोचता था, कहते एक दिन उसने थोड़े से कीड़ों को इकट्ठा किया और उनको घोट करके, मुलायम नरम करके, उनको पानी डाल के एक जूस बना लिया और एक छोटे बच्चे को कहा तो पी लो, पिएगा तो उड़ना शुरू हो जाएगा। वो छोटा बच्चा भी खुशी खुशी पी गया, बीमार हुआ। पता चला कि इस बच्चे ने कुछ कीड़े इकट्ठे करके उसका जूस निकाल के इस बच्चे को पिलाया, और टीचर के पूछने पर उसने सारा बताया कि इंसान नहीं उड़ता, पक्षी उड़ते हैं, मैंने इसको उड़ने जैसा बनाने के लिए इसे भी कीड़े मकोड़े खिलाकर और जूस पिलाकर योग्य बनाया। टीचर ने उसको डांटा तो नहीं, लेकिन सोचा कि बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता और मैड है, कुछ पागल है। मैडम ने जो हेडमिस्ट्रेस थी उसने माँ के नाम पत्र लिख दिया, क्या आपका बच्चा इस कदर मैड है कि हमारे बच्चों को इसके साथ बैठना भी खतरनाक है, प्लीज कल से इस बच्चे को इस स्कूल में नहीं भेजना। और लिफाफा लिख करके बच्चे के हाथ थमा दिया, और बच्चे ने जाकर अपनी माँ को जब लिफाफा दिया तो माँ ने लिफाफा खोल चिट्ठी पढ़ी तो माँ की आंखों से आंसू निकल आए।
उसने बच्चे को, बच्चे के पूछने पर कि मम्मी मैडम ने क्या लिखा है, कहा मैडम ने लिखा है आपका बच्चा बड़ा जीनियस है, बहुत समझदार है, हमारे स्कूल में ऐसा जीनियस टीचर कोई नहीं है, इसलिए कल से इस बच्चे को स्कूल नहीं भेजना, इसको घर में ही पढ़ाना। तो बेटा कल से तुम्हें मैं ही पढ़ाऊंगी। वो अच्छी से अच्छी किताबें चुन चुन कर लाई और बच्चे को सुबह दोपहर अच्छी शिक्षाएं देने लगी। और बच्चे को भी जब ये कहा तू बड़ा जीनियस है, टीचर ने ये कहा तेरे को पढ़ाने योग्य हमारे पास टीचर ही नहीं है, तो बच्चा भी बड़ा प्रफुल्लित हो गया। और वो जो बुद्धि इन्वेंट करता था अनेक चीजों को, वो माँ के पढ़ाने पर धीरे धीरे काफी चीजों में रिसर्च करने लगा और रिसर्च करते करते एक दिन बहुत बड़ा स्कॉलर बना और अनेक चीजों को इन्वेंट किया। और आज उस बच्चे का नाम एक बड़े साइंटिस्ट की लिस्ट में आ गया। माँ मर गई, माँ के मर जाने के बाद अचानक एक बैग में पड़ा वही लेटर उसके हाथ में आया, जिस लेटर को पढ़ा और उस लेटर में क्या लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मैड है, इस स्कूल में नहीं आप भेजना, लेकिन मेरी मामा ने तो कहा कि तुम इतने जीनियस हो। और सचमुच माँ ने बच्चे को जीनियस बनाया और एक दिन वो बच्चा इतना बड़ा वैज्ञानिक बन गया। ऐसी भी तो माँ होती। मैं ये कहूंगी कि माँ के अंदर बहुत सी विशेषताएं होती और आज वो भी माँ है जो सशक्त नहीं है। बच्चा कहीं से लड़ के आता है, झगड़ के आता है, मार के आता है, बच्चे को कुछ नहीं कहती। और ऐसी माँ के बच्चे को जब फांसी की सजा मिलती है तो बच्चा अपनी अंतिम इच्छा यही व्यक्त करता है कि मुझे मेरी माँ से मिला दिया जाए। और माँ से आंसू भरती माँ ने जब बच्चे को देखा तो रोने विलाप करने लगी। तब बच्चे ने कहा माँ आज मैं इस फांसी के तख्ते पर जा रहा हूँ तेरे कारण जा रहा हूं। अगर जब मैं लड़कर आता था, मार कर आता था, तुझे बताता भी था, तुमने मुझे कभी नहीं कहा कि इसे लड़ना नहीं मारना नहीं। मैंने यहां तक मारना सीख लिया कि जान से भी किसी को खत्म करने लग गया। ये सब तेरी ही तो बरकत है जिसके कारण आज मैं फांसी पर चढ़ा। तो मैं ये बताना चाहती हूं कि नारी का सशक्त होना बहुत जरूरी है। ये नींव है, बच्चे को गर्भ से ही वो संस्कार देने शुरू करती है, उसको बचपन से ही श्रेष्ठ बनने की शिक्षा देने शुरू करती है। लेकिन आज महिलाएं पुरुष की बराबरी की दौड़ में इस कदर भागने लग गई हैं कि अपने मूल संस्कारों को भूल चुकी है। उनके मूल संस्कार सहन करना है, समाना है, मूल संस्कार है मातृवत स्नेह देकर वात्सल्य से किसी के जीवन को अपनाना है और उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाकर किसी सही और उच्च पद पर लाना है। आज माँ अपने इन कर्तव्यों को भूल गई। हम देखते हैं बहुत अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और हर स्फीयर में आगे जा रही हैं, लेकिन परिणाम देखें तो आज दिनों दिन समाज का ढांचा बिगड़ता जा रहा है और महिलाओं की दशा पहले से ज्यादा खराब होती जा रही है। इसका कारण क्या है? अवश्य कोई तो कारण होगा। जहां महिलाएं कभी जिस कार्य में नहीं गई थी, आज हर स्फीयर में महिलाएं आगे जा रही हैं, हर कार्य में वो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन क्या कारण है कि आज उनकी परिवारों में भी दुर्दशा हो रही है और कार्यस्थलों पर भी उनकी दुर्दशा हो रही, जिसे वर्णन करना संभव नहीं। लेकिन इसका एक एक कारण देखने में आया। एक पहलू को देखा जिसमें आर्थिक पहलू रहा और जिसमें दुनिया के राइट्स
महिलाओं को क्या है, इन विषयों पर ज्ञान उसके पास तो बहुत आ गया, लेकिन जो उसके अपने मूल गुण थे, मूल स्वभाव था, मूल नेचर थी उसकी, वो सब कुछ भुला दी। आज वो पुरुष की बराबरी करने लगी। कुछ चार दिन हुए मैंने देखा एक लड़का बड़ी लंबी सी शर्ट पहने हुए, होगा आज का कोई फैशन, और गले में एक चुन्नी सी डाली हुई और बालों की चोटी का जूड़ा बनाया हुआ और एक लड़की का हाथ पकड़ा हुआ। लड़की ने बिल्कुल छोटी सी निकर, एक अंडरवियर जितनी निकर पहनी हुई, बाल उसने सारे कटवाए हुए और छोटी सी एक बुशर्ट पहनी उस लड़के का हाथ पकड़ के जा रही थी। अब लड़का कौन है, लड़की कौन है, अंतर करना जरा मुश्किल हो रहा था। कहां गई वो भारत की संस्कृति, कहां गई वो भारत की नारी जो बच्चे को जन्म नहीं देती थी, उसको जीवन देती थी, उस बच्चे को इतना योग्य बनाती थी कि बच्चा अपने पांव पर ही ना खड़ा हो, लेकिन वो अपने घर और परिवार को श्रेष्ठ बनाकर चल सके। आज शादी होती है, पता नहीं कितने दिन इकट्ठा रहेंगे और किस दिन डाइवोर्स हो जाएगा। माँ भी कहती है, अरे बेटी काम तो अपने घर जाके भी कर लेगी, अभी तुम पढ़ाई लिखाई करके अपने अच्छे जॉब पर अपने पांव पर खड़ी हो जाओ। जिस बच्ची को आपने ये संस्कार नहीं दिए, श्रेष्ठ स्वमान नहीं दिया, वो बच्ची जब अगले घर जाएगी तो अगले घर जाके अपनी सास से क्या आशा करेगी। बड़ा सुंदर एक अखबार में केस चल रहा था कि एक लड़का कह रहा था अपनी पत्नी को कि आप मेरी मम्मी को मम्मी कह के पुकारो, आप आंटी कह के नहीं पुकारो। और वो आगे उत्तर देती है, मैं मम्मी कभी नहीं कहूंगी, मैं इन्हें आंटी ही कहूंगी। मेरी मम्मी तो जब मैं उठती थी तो चाय का कप तैयार करके मेरे हाथ में देती थी, जब मैं अपने कॉलेज या अपने ऑफिस जाती थी टिफिन मेरे हाथ में तैयार करके देती थी, और ये मम्मी है जो मुझे ना तो चाय देती है ना मेरा टिफिन तैयार करती है, मैं तो इन्हें आंटी ही कहूंगी। सोचिए माँ ने क्या संस्कार बच्ची को दिए, कैसा बच्चों को बनाया। वास्तव में जन्म देना तो पशु पक्षी कीट पतंगा भी जानता है, लेकिन संस्कार देना ये वास्तव में भारत की नारी का विशेष गुण। जब मैं रूस देश में गई, मैंने देखा वहां जब बच्चा पैदा होता था, उस समय की बात है, नारी 5 साल तक उसे ऑफिस से छुट्टी देते थे, 2 साल उसे पूरी तनख्वाह मिलती है, उसके बाद 3 साल तक उसे तनख्वाह आधी मिलती है, और उसके बीच में अगर दूसरा बच्चा हो जाता था तो उसे तनख्वाह थोड़ी और कम मिलती थी ताकि बच्चों की सेवा सुरक्षा ठीक कर सके। लेकिन केवल खिलाना पिलाना घुमाना और ठंडी हवा दिलाना ही पालना नहीं है, उनके संस्कारों का निर्माण करना का। और ये चीजें मैं विदेशों में देखती थी। मेरी इंटरप्रेटर थी, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी सुंदर थी, इंग्लिश बहुत अच्छी जानती थी और हर बात को बड़े सुंदर रूप से पब्लिक तक पेश करती थी। और एक दिन मेरे पास आके कहती है, दीदी मैं आपसे एक राय लेने आई हूँ, मेरा पति बहुत अच्छा है, मैं ऑफिस से जब जाती हूँ मेरा टेबल तैयार करके रखता है, मेरे कपड़े प्रेस करके हैंग करके रखता है, हर चीज मुझे समय पर उपलब्ध होती है, लेकिन मैं इस पति से डाइवोर्स लेना चाहती। मैंने कहा, डाइवोर्स, ऐसे अच्छे पति से डाइवोर्स क्यों ले रही हो? कहा, दीदी आपको मालूम है 15 वर्षों से एक ही हस्बैंड के साथ रही पड़ी हूँ, बहुत बड़ा जुल्म हो गया, 15 सालों से एक ही हस्बैंड के साथ रही हुई हूँ। और मैं कहती हूँ आज जिस पाश्चात्य संस्कृति को हमारी भारत की महिलाएं फॉलो कर रही हैं, वास्तव में ये संस्कृति भारत की संस्कृति नहीं है कि आज शादी करना और 4 मास में डाइवोर्स की पत्र भर कर दे देना। माँ भी कह देती है, बेटी कुछ बात हो तो घर चले आना, तेरे लिए रोटी कमी नहीं है। अरे वो भी टाइम था जब माँ कहती थी, जा बेटी रावी, ना कोई आवी ना कोई जावी, शादी कर अपने घर में बसना, अब तेरा डेड बॉडी यहां से निकले। ठीक है वो बहुत जास्ती थी, बच्चियों का ध्यान रखना माँ बाप का भी फर्ज होता है, लेकिन बच्चियों को बसने के लिए संस्कार देना भी तो माँ बाप का फर्ज होता है। उसे घर बसाने के लिए कुछ खाना पीना बनाना सिखाने के लिए भी दो बहुत माँ बाप का फर्ज होता है। ऐसा तो नहीं शाम को टिफिन बना बनाया बाजार से आ जाएगा, खाना खा लेंगे, बच्चे कैसे पलेंगे, क्या वो बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे या रोगी रहेंगे। मैं कहूंगी एक सुशिक्षित संस्कार वाला समाज अगर हमने बनाना है तो हमको सबसे पहले महिलाओं को सुशिक्षित करना होगा, उन्हें सशक्त बनाना होगा, ऐसी सशक्त बने जो अपना जीवन तो अपने मूल संस्कारों से सजा लें और अपने परिवार वालों को अपने श्रेष्ठ संस्कारों की पालना इस कदर दें कि उनका परिवार भी सुखद हो, वे भी सुखद जीवन जिएं और पूरा समाज उनके जीवन को फॉलो करे। ऐसी माताएं निर्माण करने के लिए परमात्मा पिता ने इस विद्यालय की स्थापना की, जिस विद्यालय के आज कितने 140 देशों में सेवा केंद्र हैं और हर सेवा केंद्र में बहनें और माताएं ही इंचार्ज हैं, और अनेक आने वाली आत्माएं, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे वो रशियन है, चाहे वो इटालियन है, किसी भी कंट्री की हैं, उनका जीवन कितना पवित्र बनाती हैं, कितना शाकाहारी जीवन उनका है, कितने संस्कारी वो बनती हैं और कितनों को संस्कारी बनाने के महान कार्य में देश और विदेश में स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट आने से उनका जीवन लगा हुआ है। तो मैं आपको यही संदेश देना चाहूंगी कि ये श्री विश्वविद्यालय किसी का घर नहीं छुड़ाता, किसी के धंधे से उसे मुक्त नहीं करता। घर में रहो, परिवार में रहो, लेकिन घर और परिवार को सराय ना समझो, उसे होटल बनाकर ना रखो, अपने जीवन को इतना दिव्य और इतना श्रेष्ठ बना लो कि आपके बच्चे भी आपके योग्यता को फॉलो करें और धीरे धीरे एक परिवार से दूसरे परिवार को कलम लगती चली जाए। महिला का घर की दूरी होने के नाते बहुत बड़ा रोल है। कहा जाता है हर पुरुष के पीछे एक महिला का योगदान होता है। अगर पुरुष जिसका तार्किक समक्ष ब्रेन बहुत तेज है, अनेक प्रकार के धंधे और बिजनेस करता है, अगर किसी धंधे या बिजनेस में कुछ डाउनफॉल होता है तो महिला जो मनोस्थिति में श्रेष्ठ है वो अपनी मनोस्थिति के आधार से और अपने श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से अपने पति को भी सही दिशा में लाकर अपने घर परिवार को आगे बढ़ा सकती है। यही इस विद्यालय की शिक्षा है और यही सारे विश्व को देन है। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत सुंदर उदाहरणों से आदरणीय चक्रधारी दीदी जी ने हमें प्रेरणाएं दी हैं कि कितना महत्वपूर्ण भूमिका है एक माँ की, एक महिला की अपने बच्चों के निर्माण में, लेकिन उसके लिए उसका स्वयं का आचरण इतना उत्तम होना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा आचरण होगा वैसा ही बच्चा सीखता है। हम जैसा माहौल उसे देते हैं वही प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। अगर घर में वो बच्चा लड़ाई झगड़े का माहौल देखेगा तो वही सीख जाएगा। अगर घर में सहनशीलता का, धैर्य का माहौल है तो बच्चा भी धैर्य रखना सीखेगा। अगर उसको प्रोत्साहन का माहौल मिलता है, बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है या कोई सफलता प्राप्त करता है और हम उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो उसके अंदर वो आत्मविश्वास आता है। तो ये हमारी जिम्मेवारी होती है कि कितना सूक्ष्म रूप से हम बच्चों के जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे दीदी ने कहा कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पहला कार्य यही किया जाता है कि हम राजयोग के अभ्यास के द्वारा अपने आप में, अपने व्यक्तित्व में, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएं, अपने संस्कारों को हम श्रेष्ठ बनाएं। तो अपने आप हमारे परिवार के अन्य सभी सदस्यों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अब इस उद्घाटन सत्र का हम विधि पूर्वक उद्घाटन करेंगे दीप प्रज्वलन करके। कहते हैं दीप जलते जगमगाते रहें और वो सदा हमारे मन के अंधकार को दूर भगाते रहें। तो अभी मैं मंचा सीन हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वो समूह आकर के दीप प्रज्वलित करेंगे और साथ साथ में जो भी अन्य सभी सत्रों के हमारे वक्ता हैं, चाहे वो बीके हैं या हमारे मेहमान हैं, वो भी मंच के नीचे जो दीपक स्टैंड रखा जा रहा है वहां आकर के आप दीप प्रज्वलन करेंगे। और निर्मला पंडित जी जो नेपाल से पधारे हैं, आप भी आकर के दीप प्रज्वलन में सहयोग देंगे। तो आप बहनों की तरफ हमारे जो ब्रह्मा कुमारी टीचर्स सेने हैं, जो स्पीकर हैं, वो आएंगे, और यहाँ भाइयों की तरफ जो हमारे मेहमान वक्ता हैं अन्य सेशंस के, वो आएंगे। चाहे जिन्होंने स्पीच की है कल स्वागत सत्र में वो भी आएंगे। और आप सभी भी अपने स्थानों पर खड़े होकर मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से जैसे कि वो दीप प्रज्वलन हो रहा है ऐसा करें।
शुभ संकल्प
जो भी अन्य सत्रों के हमारे अतिथि वक्ता हैं वो भी यहाँ भाइयों की तरफ आकर के दीप प्रज्वलित करें।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए
जिन्होंने नीचे दीपक स्टैंड पर दीप प्रज्वलित किया है, आप स्टेज के सामने आकर खड़े होंगे, सभी का एक संगठित ग्रुप फोटो हो जाएगा। हमारे सभी अतिथि वक्ता जिन्होंने नीचे दीपक स्टैंड पर दीप प्रज्वलन किया है, आप स्टेज के सामने खड़े हो जाएं। आदरणीय चक्रधारी दीदी जी का ये विचार है कि आप सभी का एक ग्रुप फोटो हो जाएगा, यहीं सामने स्टेज के सामने खड़े हो जाइए। और अभी हमारे मध्य में उपस्थित हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक महान विभूति, हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय ब्रजमोहन भाई जी, जो वर्तमान में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के। आप पॉलिटिशियन विंग के अध्यक्ष हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मैनेजमेंट कमेटी के आप मुख्य सदस्य हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के आप हेड हैं। ब्रह्म कुमारीज एजुकेशनल सोसाइटी राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के आप सेक्रेटरी हैं। दिल्ली एनसीआर जोनल सर्विसेज के आप डायरेक्टर इंचार्ज हैं। ओम शांति रिट्रीट सेंटर जो दिल्ली में है उसके आप प्रिंसिपल एडवाइजर हैं। टीवी चैनल में खासकर जो ब्रह्म कुमारीज का पीस ऑफ माइंड चैनल और अवेकनिंग टीवी चैनल है उसमें नियमित आपके प्रवचन प्रसारित होते रहते हैं। आपने अनेक शॉर्ट फीचर फिल्म्स का भी निर्माण किया है। आप लगभग 55 से भी अधिक वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने 1956 में आपने सीए किया था और उसके बाद 17 वर्षों तक आपने फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में आपने कार्य किया और उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के 73 से आप पूर्ण रूप से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पूरे विश्व के पांचों ही महाद्वीपों में अनेक बार आपने भ्रमण किया है और विश्व के लाखों आत्माओं के ज्ञान से अपने अनुभवों से उनको लाभान्वित किया है। आपके लिए मैं कहूंगी, वाणी में जिनके हैं सरस्वती का वास, बुद्धि में जिनके हैं गणपति का वास, दिल में जिनके हैं परमात्मा का वास, ऐसे प्रभु रतन आप हैं खास। तो हम आपसे आज वरदानी बोल सुनेंगे, हम सबके लिए आप आशीर्वचन कहेंगे। आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी।
ओम शांति, वंदे मातरम, भारत माताओं की जय। आज हम जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में भगवान का विद्यालय है, उसमें हमको बताया जाता है कि परमात्मा ने तो आत्माओं को नर नारी के रूप में बराबर का दर्जा दिया था और उसका सबूत यह है कि विष्णु जी के दो हाथ दिखाए जाते हैं, चार हाथ, उसमें दो श्री लक्ष्मी के दो श्री नारायण के होते हैं। और जब ये दुनिया शुरू होती है सतयुग में तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, जिसको आज हम भारत कहते हैं, भारत ही विश्व था तो सारे विश्व पर राज्य होता है। और आप चित्रों में देख सकते हैं कि दोनों ही राज सिंहासन पर बराबर बराबर बैठे हुए विराजमान हैं और उनको विश्व महाराजन विश्व महारानी कहा जाता है, दोनों को बिल्कुल बराबर का दर्जा प्राप्त है। जब तक ये बराबर का दर्जा मिलता रहा दुनिया में स्वर्ग रहा सुख रहा पैरिटी रही किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं था। फिर भगवान बताते हैं जैसे किसी भी नाटक के अंदर थोड़ा बहुत फिर बदल होता है, जब ये सृष्टि चक्कर आधा चल गया तो उस समय सब भूल गए कि हम आत्मा हैं। जैसे बताया जा रहा था कि पुरुष में भी आत्मा है स्त्री में भी आत्मा है, तो सब अपने आप को भूल कर शरीर मानने लग गए। ये बहुत सारे धर्मों में कहा गया है कि एडम और ईव यानी पुरुष और स्त्री स्वर्ग में इकट्ठे रहते थे, उन्होंने कोई गलती की जिससे वो नरक में आ गए। जब शरीर मानने लग गए तो शरीर में पुरुष प्रधान हो गए। अब आप देखेंगे कि दो युगों से पुरुष प्रधान समाज चल रहा है, सारे धर्म स्थापक पुरुष हैं। आप देख लीजिए तो वो जो कुछ भी बनाएंगे वो पुरुषों की फेवर में बनाएंगे। नारी को नीचे का दर्जा दे दिया गया, यानी वो जो बराबरी थी खत्म हो गई। सबूत क्या है कि राज सिंहासन पर जहां लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे बैठते थे वहां राजा लोग बैठने लग गए और महारानियां पर्दे के पीछे चली गई। आगे चलते जाइए तो पुरुष प्रधान समाज ने ऐसी बातें, पहले तो थोड़ा थोड़ा नारी का दर्जा कम किया, पति तुम्हारा परमेश्वर है आदि आदि उसको सेकंड ग्रेड कर दिया। फिर पुरुष प्रधान समाज ने यहां तक कहना शुरू कर दिया, दुनिया में जो गिरावट आई जो पाप बढ़ा जो काम बुरी दृष्टि पैदा हुई उसमें नारी को दोषी कह दिया कि नारी नरक का द्वार है, अर्थात नारी को नीचे कर दिया। अब नीचे कर दिया अपने आप को ऊंचा कर दिया, यहां तक कि जैसे आप सारी बहनें कह रही थी कि नारी पुरुष का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम ये बोलते हैं इसका मतलब हम पहले पुरुष को कुछ ऊंचा दर्जा दे देते हैं जिसका कोई मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। ये सब पुरुष प्रधान समाज का छलावा है। लेकिन कुछ भी है, नतीजा क्या हुआ कि जब से लेकर नारी का निरादर होना शुरू हुआ है, गीता पढ़ लीजिए नारी को शूद्र के बराबर का दर्जा दिया गया है, तो दुनिया नीचे आती गई है। नीचे आती गई है, वो जो स्वर्ग था वो नरक बनता गया है। तो आज आप टोटली देख रहे हैं कि दुनिया घोर नरक इसीलिए है कि नारी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा गया। अब भगवान तो न्यायकारी है, अब भगवान देख रहा है, काफी आजादी दे दी उसने पुरुषों को कि तुमने क्या कर लिया कि जो जिसका आधा पार्ट था, बल्कि जैसा बताया गया जिसका मां का पार्ट था। अब गौर कीजिए, मां के बगैर ना कोई बाप बन सकता है ना कोई बेटा बन सकता है ना कोई बेटी बन सकती है, उस परिवार ही नहीं बन सकता मां के बगैर। अब ऐसी हालत में भगवान को भी आके मां बनना पड़ता है, तब जाके भगवान हमको कुछ देता है। गीता में लिखा हुआ तुम्हें मातश्च पिता, जब भगवान पिता है परम पिता है तो बस परम पिता ही है, लेकिन जब धरती पर आता है ब्रह्मा को साथ लेता है तब हम उनकी संतान बनते हैं। ये तो हुई फिलॉसफी की बात। अब जब भगवान देखता है कि इन्होंने तो पुरुषों ने अपने हाथ में दुनिया को लेकर के नरक बना लिया है, तो फिर भगवान कहता है कि ठीक है, अगर इस दुनिया को स्वर्ग बनना होगा कभी तो मैं माताओं के द्वारा ही बनाऊंगा। तो ये भगवान की एक लीला है कि वो कहते हैं नारी नरक बनाती है, भगवान कहता है मैं नारी के द्वारा ही स्वर्ग बनाऊंगा, नहीं तो स्वर्ग बन ही नहीं सकता। अब ये कैसे? आप देखिए कि पुरुष प्रधान समाज ने जो मुख्य कार्य हैं उसमें हम जानते हैं तीन मशहूर देवता हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको तो दिखा दिया है, लेकिन जो तीन देवियां हैं सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा उसको गौन कर दिया है। आज जब भी त्रिमूर्ति का चित्र होगा ब्रह्मा विष्णु शंकर देखेंगे। कभी आपने त्रिमूर्ति के चित्र में सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा को देखा? तो भगवान कहता है कि मैं दिखाऊंगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं क्योंकि वैसे मेरे लिए दोनों बराबर हैं, लेकिन क्योंकि पुरुषों ने धीरे 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 करके नारी का सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका जो रोल था सारे छीन लिया है, इस कारण से जब भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं माताओं का ही सहारा लेकर के, माताओं का ही साथ लेके मैं उनको ही मैसेंजर बनाता हूं अपना पैगाम देने के लिए, अपना ज्ञान देने के लिए, अपने गुण और शिक्षाएं देने के लिए। इसका सबूत क्या है? अगर किसी के पास बुद्धि है, ठीक अच्छी बुद्धि है, और अगर किसी के पास धन भी है, पूरा धन है, और अगर किसी के पास शक्ति भी है, दुनिया में किसी के पास बुद्धि भी है, धन भी है और शक्ति भी है, तो क्या वह व्यक्ति कभी असफल हो सकता? नहीं। किसी न किसी चीज की कमी होगी तब असफल होगा। अब देखिए सरस्वती जी को कहा जाता है गॉडेस ऑफ विजडम, अर्थात बुद्धि की देवी, सब दुनिया जानती है। अब बहन जी भी कह रही थी ब्रिज मोहन जी के मुख में सरस्वती बैठी है, अर्थात सरस्वती का इतना मान है। तो आप सोचिए बहुत सारे महात्मा अपने नाम के साथ सरस्वती लगाते हैं, स्वामी फलाना फलाना सरस्वती। अब ये सरस्वती जो है इसके पास ज्ञान कहां से आया? कहा जाता है परमात्मा के पास ज्ञान है, उसने ब्रह्मा के द्वारा दिया और सरस्वती उसकी बेटी थी। अब सार रूप में ज्ञान क्या है सरस्वती के पास, जिसको हम कहते हैं बुद्धि? दुनिया में दो तरह की बुद्धि होती है, एक को कहते हैं नॉलेज और एक को कहते हैं विजडम। नॉलेज में दो भाग होते हैं, अच्छा और बुरा। आज किसी से पूछो वो कहेगा नॉलेज का क्या मतलब है? मुझे पता है ये अच्छा ये बुरा है। अच्छा आपको पता है अच्छा और बुरा है, आगे क्या? अच्छा मैं कर नहीं सकता, बुरा मैं छोड़ नहीं सकता, तो हो गया फैसला। सबको पता है अच्छा बुरा क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि अच्छा करने में तकलीफ हो रही है, बुरा छोड़ने में भी तकलीफ हो रही है। तो सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज नहीं है, सरस्वती गॉडेस ऑफ विजडम है। विजडम नॉलेज से ऊपर की चीज है जो ईश्वरी ज्ञान है। वो क्या है कि एक ही साइड देखो, अच्छा ही अच्छा देखो, खत्म। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति अच्छा ही अच्छा देखने लग जाएगा, बुरे में भी अच्छा देखेगा, उसकी बुराई नहीं देखेगा, तो उसके साथ सब कॉपरेट करेंगे, उसकी बुद्धि को सोचना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने तो एक ही देखना है। तो भगवान आकर के माताओं को सरस्वती रूप देके ये सिखाता है कि अच्छे बुरे से ऊपर चढ़ो, अच्छा देखो। आज हमारी समाज भी यही कहता है, हम किसी को दलित वर्ग का कहते हैं, किसी को काला कहते हैं, वो कहते हैं नहीं सबको आत्मा देखो। आगे चलिए लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जी की तो लोग दिवाली के दिन पूजा करते हैं, फिर कहते हैं नारी नरक का द्वार है, लक्ष्मी जी के आगे तो नहीं कह सकते। अब लक्ष्मी का मतलब लोगों ने पैसा ले लिया, धन ले लिया है, वास्तव में लक्ष्मी का अर्थ होता है सर्व हर चीज को मूल्य देना, जो आत्मा अपने समय को मूल्य देती है, अपने संकल्प को मूल्य देती है, अपने बोल को मूल्य देती है, वो मूल्य है। पैसा उसमें एक सिर्फ एक चीज है। तो भगवान कहते हैं कि सर्व गुणों की जो धारण किए हुए है वो श्री लक्ष्मी है। तो ये भी देवी का रूप है, किसी ने किसी पुरुष के रूप में देवी को नहीं बनाया। उसके बाद आइए आप दुर्गा जी को, दुर्गा जी को तो शक्ति की देवी कहा गया, शेर के ऊपर उनकी सवारी दिखाई गई है। अब शेर के ऊपर सवारी का मतलब क्या होता है, को सिंह के ऊपर आसन, शेर के सिंह को कहते हैं। तो सिंह के ऊपर जिसका आसन है इतना शक्तिशाली है, वही सिंहासन पर बैठने लायक है, अर्थात वही राज्य कर सकता है, अपने ऊपर भी राज्य कर सकता है और दूसरों के ऊपर भी राज्य। उसकी शक्ति ऐसी है, उसमें कोई हिंसा नहीं है। अब श्री सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और दुर्गा जी को मिला लो तो ये नारी के रूप है। उसके बाद आप और भी देख लीजिए, जितने व्यक्ति के अंदर गुण चाहिए, जितनी शक्तियां चाहिए, सब में नारी का रूप दिखाया गया है। अन्नपूर्णा नारी को कहा गया है, शीतला देवी नारी को कहा गया कोई बहुत गुस्से वाला है, ज्वाला देवी नारी को कहा गया किसी को मंगूसा चाहिए, और भारत के अंदर दो बार हम जानते हैं नवरात्रे होते हैं जहां महिला शक्तियों की पूजा होती है। तो इसलिए उस नारी शक्ति को डाउन करके मनुष्यों ने क्या किया, बड़े शास्त्र लिख लिए, बड़े धर्म बना लिए, बड़े बड़े गुरु बन गए, कुछ भी कर लिया, एजुकेशनल सिस्टम में भी पुरुष प्रधान कर दिया। अब धीरे धीरे महिलाओं को शिक्षा देनी शुरू की है, अच्छा है, वो एजुकेशनल सिस्टम वैसे ही खराब है। कहने का भाव ये है, सारे खराब समाज को पुनः अच्छा करने के लिए, क्योंकि पुरुषों ने नारी का निरादर किया था, तो भगवान ने कह दिया नारी स्वर्ग का द्वार है। अगर स्वर्ग बनेगा तो नारी के थ्रू बनेगा, इसलिए परमात्मा ने धरती पर आकर के ब्रह्मा जी के द्वारा शिव शक्तियों को, जिसको हम ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, उनको रचा। अब आगे जाके फिर बैलेंस बराबर हो जाएगा, सतयुग में फिर नर नारी बराबर चलेंगे, युगों दो युगों तक बराबर चलते हैं, लेकिन जब वो बराबरी पुरुष तोड़ते हैं तब से ये दुनिया नरक बनना शुरू होती है। इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप ऐसे स्थान पर आए हैं, ऐसे ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए हैं जिसको नारी को सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है। नारी ऑलरेडी सशक्त है। जैसे कोई कह रहा था, कई प्रकार के नाम गिना रहे थे कि लेडी हैज लैड इन इट, वुमेन हैज मैन इन इट, ऐसे कहा जाता है ना, तो मैडम हैज एडम इन इट। तो भाव उसका ये है कि मातृशक्ति श्रेष्ठ है और मातृ सृजन करती है, और जो सृजन दुनिया में जितनी पूजा होती है, जितना रिस्पेक्ट होता है, सृजन करने वाले का होता है। स्थापना करना आसान है, विनाश करना आसान है। कोई हॉस्पिटल खोल ले बहुत आसान है, हॉस्पिटल को चलाना मुश्किल होता है। घर बना ले बहुत आसान है, घर को चलाना मुश्किल होता है। तो जो सृजन की शक्ति है, जिसके लिए बहुत सारी ऐसी ताकतों की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं दरुण, करुणा, दया, क्षमा, वात्सल्य, वो सब नारी में होता है। इसलिए हम तो ब्रह्मा कुमारी में आके भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें परमात्मा ने सिखाया कि अगर मातृशक्ति आगे बढ़ेगी और आप मातृशक्ति को आगे बढ़ाने में पुरुष लोग हेल्प करेंगे तो बहुत जल्दी धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। और उसका सबूत है कि आज जितने देशों में ब्रह्मा कुमारी हैं, आप देखिए ब्रह्मा कुमारी कोई लिमिटेड नहीं है, भारत विश्व था, इसीलिए लक्ष्मी नारायण थे। अब आप देखिए कि विश्व में आकर के परमात्मा ने वही ज्ञान दिया है जो कि लाखों परिवार कितने हजार ब्रह्मा कुमारियां सारे विश्व में हैं, बहनों ने आपको सुनाया, तो सारे के सारे वो जो भारतीय सभ्यता जिसको हम कहते हैं, जो देवी देवताओं की सभ्यता है, उसको धारण करके इस विश्व के अंदर जगह जगह पर ज्योत जगा रहे हैं, ताकि जो नई दुनिया आएगी उसमें फिर देवी देवताओं का राज होगा। तो आप ऐसी जगह आए हैं जहां आपको ये शिक्षा दी जाएगी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के या किसी ग्रुप के करने से कुछ नहीं होता। अगर आप भगवान ने समय का भाव बताया है कि समय के अनुसार जैसे किसी चीज का समय आ जाता है, कहा जाता है देर इज ए टाइम फॉर एवरीथिंग, सूर्य निकलता है रोशनी हो जाती है, फसल बोने का समय आता है फसल उग जाती है। अब बहुत हो चुका, पुरुष प्रधान समाज ने एटम बम तैयार कर लिए। देखो अगर दुनिया में नारियां होती तो शायद ये एटम बम इन्वेंट ही नहीं कर पाते। तो पुरुष प्रधान समाज कितना भयानक हो सकता है, इसलिए उसको कहा जाता है निर्दयी। तो आज जिसको हम कहते हैं अनाचार, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, जो कुछ भी है वो पुरुष प्रधान समाज की वजह से। कहीं भी नारी होगी उसके अंदर दया होगी, करुणा होगी, वो सहन कर लेगी, दूसरे का नुकसान नहीं होने देगी। ये अपना नुकसान कर लेंगे दूसरे का नुकसान करने के लिए, इतना खतरनाक पुरुष बन गया है, क्योंकि उसमें पुरुषपन के संस्कार आ गए। वास्तव में दोनों संस्कार बराबर सतयुग में थे। तो अब भगवान हमको आकर सिखा रहा है, इसकी वजह वही थी, तुमने शरीर मान लिया, मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं, आत्मा मानेंगे तो फिर बराबर हो जाएगा। इसलिए भगवान आके पहली गलती दूर कराते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं कि चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप स्त्री हैं, आप आत्मा हैं। आत्मा देखेंगे तो आपके अंदर बराबर का नेचुरल मादा रहेगा। जो ही आपने देखा मैं पुरुष हूं, आपके अंदर आ जाएगा मैं कुछ सुपीरियर हूं। कोई देखेगा मैं नारी हूं, समाज ने ऐसा बना रखा है, वो सोचेगी मैं थोड़ी पीछे रह के चलूं तो अच्छा है। लेकिन आत्मा के रूप से जितना सशक्तिकरण ब्रह्मा कुमारी में भगवान ने किया है, वो आत्मा मनवा के किया है कि चाहे तुम शारीरिक तौर पे कमजोर हो, गरीब हो, अमीर हो, काले हो, गोरे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, तुम आत्मा हो। इसलिए बहुत खुशी की बात है आप इस कार्यक्रम चला रहे हैं। अब वो सीजन आ गया है जबकि नारी आगे आकर के समाज को, जैसे आपका विषय है विश्व की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, नारी सशक्त नारी चाहिए। और सशक्त नारी वो है जो अपने आप को शिव शक्ति आत्मा मानती है और जिसका सशक्तिकरण यहाँ कराया जाएगा। ओम शांति।
आदरणीय भाई सब का विशेष धन्यवाद मैं देना चाहूंगी। आपने हमारी बहनों को परमात्मा ने कैसे उन्हें पुनः गौरव दिया है, समय चक्र के साथ कैसे उनकी स्थिति में परिवर्तन आया, कैसे ये समाज पुरुष प्रधान बन गया, कहां दोनों की समान स्थिति थी और आज परमात्मा ने कैसे पुनः नारी को स्वर्ग का द्वार बना दिया है, ये आपने हमें स्मृति दिलाई। और विशेष आभार आपका इसलिए भी है कि हमारे निमंत्रण पर इतना अधिक व्यस्त होते हुए भी, और सबसे बड़ी बात कि भाई साहब की आयु 90 वर्ष है, इस आयु में भी आप हमारे लिए समय निकाल करके विशेष बहनों को आपने उनकी महिमा और उनका क्या महत्व है वो स्मृति में दिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और भाई साहब हमारे बीच से प्रस्थान करेंगे, आपका आगे भी कार्यक्रम है, आप विशेष शांतिवन से हमारे बीच पधारे हैं और साथ साथ आदरणीय चंद्रिका दीदी भी हमारे मध्य से प्रस्थान करना चाहते हैं, वो भी अहमदाबाद से विशेष रूप से आपके लिए आए हैं, तो दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे आज के उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि श्रीमती अंजना पवार जी आप वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं भारत सरकार के राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के और साथ साथ सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी मैनुअल स्केवेंजर्स के आप सदस्य हैं। आप 1995 से राजनीति में सक्रिय हैं और सरकार में विभिन्न पदों पर आपने सेवाएं दी हैं। आपके लिए मैं कहूंगी, निशाने पे लग जाए उसे कहते हैं तीर, दिल में उतर जाए उसे कहते हैं तस्वीर। और हमें अंजना पवार जी का उद्बोधन सुनने को मिले, इसे हम कहेंगे अपनी श्रेष्ठ तकदीर।
सभी को प्रणाम, ओम शांति। राजस्थान के स्वर्ग कहे जाने वाले प्रकृति के गोद में प्राकृतिक सौंदर्य को लिए हुए माउंट आबू की इस पावन धरा पर आज जो कार्यक्रम यहां हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में जो मंचासीन अतिथि गण हैं, मेरे आदरणीय सभी सम्मानित अतिथि और दूर देश से और विदेश से आने वाले सभी मातृशक्ति के रूप में विराजमान सभी नारी शक्ति, देखिए मुझे पहली बार आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। सभी लोग अपने अपने जो टॉपिक्स हैं, जो अपने अपने कार्य हैं, उनसे संबंधित बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी जो मैं कार्य कर रही हूँ उसे उसके संबंध में आप लोगों के बीच में चर्चा करूं। देखिए, मैंने सुना है अभी भी कि हम जो नारियां हैं वो पुरुषों से होड़ लगा रही हैं, हम लोग दौड़ रहे हैं उनके साथ में, उनके बराबर आने के लिए। तो जैसा आदरणीय दीदी ने भी बताया कि ऐसा नहीं है, हम उनसे तो होड़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा तो कोई है ही नहीं सानी जो हमसे टक्कर ले सके। जिसने पुरुष को पैदा किया है वो उसके पीछे नहीं भागेगी, जिसने इस संसार का निर्माण किया है, जिसने देवी के रूप में अपने बल, अपने पराक्रम और अपनी शक्ति को दिखाया है, वो पुरुषों के साथ होड़ नहीं करने वाली। ऐसा नहीं है कि पुरुष हमारे जीवन में कुछ महत्व नहीं रखते हैं। कहते हैं पुरुषों के पीछे, उनकी सफलता के पीछे नारी का हाथ होता है, तो कई जगह ऐसा भी है कि नारी की सफलता के पीछे भी पुरुषों का हाथ होता है। तो नारी को सशक्त बनाने में पुरुष भी अपना योगदान करते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूंगी, अगर आपकी अनुमति हो तो। मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से आती हूं, चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी में एक छोटा सा गांव है, वहां की मैं रहने वाली हूं। जब सेकेंड ईयर में मैं पढ़ती थी तो उसी टाइम मैंने जो जिला परिषद मेंबर होते हैं उसका इलेक्शन लड़ा था, और वो था आरक्षण का, उसमें कि महिला सीट वहां पर आई थी उस गांव में। तो बहुत ही कम एज में राजनीति में मैंने प्रवेश किया था, और वो इसलिए हुआ था कि मेरे मां बाप ने मुझे अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए और इस पुरुष प्रधान देश में अपनी योग्यता साबित करने का उन्होंने मुझे एक हुनर दिया था। इस वजह से आज 30 सालों के लंबे सफर को तय करते हुए दिल्ली तक मैं पहुंची हूं और आप लोगों के बीच में आज मुझे बोलने का जो मौका मिला है वो सब मेरी माँ और मेरे पिताजी का बहुत ही बड़ा उसमें योगदान है। साथ ही जब शादी होने के बाद मैं जयपुर गई तो अपने पति जो कहते हैं ना कि उन्होंने मुझे माँ बाप जितना सपोर्ट उन्होंने किया था उतना ही सपोर्ट उन्होंने मुझे इस जीवन में इस काम को आगे बढ़ाने में किया। बाद में जब बच्चे थे तो बच्चों ने भी मेरा पूरा सहयोग किया। कभी मैं रुकती थी तो बच्चे भी बोलते नहीं मम्मा आप जब जाओगे जब कुछ काम करोगे तभी आपको कुछ हासिल करने का मौका मिलेगा, अपने किसी का भला करने का मौका मिलेगा। तो मैंने जब कल से मैं जब यहाँ आई हूँ तो मैंने एक चीज यहाँ पर देखी है कि सेवा कार्य। देखिए सब लोग सेवा का कार्य कर रहे हैं। आप लोग सेवा हर रूप में होती है लेकिन जो सबकी सेवा करते हैं उनकी सेवा करने का भी किसी को सोचना चाहिए। मैं बात कर रही हूं अंतिम पंक्ति में बैठे हुए जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई वाले हैं, जो बहुत ही गरीब और पीड़ित लोग हैं, उनकी सेवा करने का कोई बीड़ा कोई उठाएंगे क्या? आज माउंट आबू से आप लोग सभी इतने आदरणीय लोग हैं, सब लोग हैं जो जानते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। कई महिलाएं हैं इसमें जो सुबह सवेरे आप लोग देखते होंगे सड़क पर और कहां पर वो सब तरफ सफाई करने के लिए निकलती हैं। कौन पढ़ाएगा उनके बच्चों को, कौन स्कूल भेजेगा उनके बच्चों को, कौन सुबह उठ के जल्दी उनको उठाएगा, नहलाएगा, धुलाएगा, तैयार करेगा, उनके लिए कुछ टिफिन लंच बॉक्स बनाएगा, कौन स्कूल भेजेगा? तो जो सेवा है अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो इन लोगों के लिए भी कुछ अपना एक ऐसा बनाइए ताकि इनका भी कुछ भला हो सके। आज जो ये रह रहे हैं उनकी हालत ऐसी है कि घरों में पानी भरा है, ऊपर छत नहीं है, जितनी तनख्वाह में इनको मिल रही है वो सफिशियंट नहीं है कि वो अच्छा खा सकें, अच्छा अपने बच्चों को खिला सके, पढ़ा सके, लिखा सके, अच्छे कपड़े उनको दे सकें, अच्छा घर उनको दे सकें, ये संभव नहीं है। तो अगर सेवा कार्य से थोड़ा बहुत भी कुछ उन लोगों के भले के लिए कुछ लगे तो मैं सोचती हूं कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा पुण्य का कार्य होगा। कोई उनके लिए ध्यान दे ये बहुत अच्छा कार्य होगा। बेरोजगारी है उनके पास, भूख के मारे वो सीवर की सफाई के लिए उतरते हैं। कोई भी इंसान उस सीवर के मेन होल के पास खड़ा नहीं रह सकता, कोई भी इंसान, लेकिन मजबूरी उनको उसके अंदर घुसाती है और अकाल मृत्यु के शिकार वो लोग हो जाते हैं। जवान जवान बच्चे उसमें काल का ग्रास बनते हैं, कौन सोचेगा उसके बारे में? सब लोग मिलके सोचेंगे, माँ है, माँ, हम लोग माँ हैं, हमारे मन में दया है, करुणा है, सेवा हम करते हैं सबकी, घर में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं। कभी उन लोगों को भी देखिए कि कैसे काम वो करते हैं, आज सभी महिलाएं, सभी माताएं बहनें, सभी जो यहां पर मातृशक्ति यहां विराजमान है, शांति से कभी इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि कैसे इन लोगों के लिए हम कुछ मदद कर सकते हैं। यहां आना, आप सभी लोगों का आशीर्वचन सुनना, आप लोगों से मिलना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं चाहती हूं कि अगर इन गरीब लोगों के लिए कुछ अच्छा हो जाए तो मेरा यहां आना सफल हो सकता है। इस पे मैं चाहती हूं कि आपकी जो ये संस्था है, अगर कुछ भी कर सकें तो आप लोग इस पे विचार करिए। पूरे कई देशों में है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे भारत में हम ब्रह्म कुमारी जो संस्था है, जो एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम देखते हैं। तो जो देश में है उस स्तर पर इसका कुछ कार्य हो, कुछ मदद इन लोगों की करें तो ये बहुत ही सेवा का कार्य होगा। और नारी सशक्त है, मतलब थी, है और रहेगी, उसमें कभी कोई शंका की बात ही नहीं है। जो चाहे वो कर सकती हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ये एक माँ ही तो करती है। जो हमारे पहला शिक्षक यानी पहला गुरु हमारी माँ है। मुझे ध्यान है, मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे चूल्हे के पास ही बैठ के पढ़ाती थी, वो खाना बनाती थी और मुझे पढ़ाती थी। तो पहला गुरु तो वो ही है, स्कूल हम बाद में जाते हैं। आज आप लोगों का मार्गदर्शन, आप लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला, उसकी मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूं। और मैंने जो कुछ कहा हो अगर अच्छा लगा तो विचार करिएगा, बुरा लगा तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन कभी भी एक पल के लिए उसके बारे में सोचिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।
धन्यवाद आदरणीय बहन अंजना पवार जी, आपने जैसे सफाई कर्मचारियों की स्थिति की और ध्यान खिंचवाया, तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जाती है और समय प्रति समय जो भी उनके बच्चों की आवश्यकताएं हैं या त्योहार के समय उन्हें जब विशेष सहयोग की जरूरत होती है तो भी विद्यालय की तरफ से उन्हें ये सब दिया जाता है। और अपने विद्यालय के द्वारा गांव-गांव में जहां भी गरीब बस्तियां हैं वहां भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो ये पूरा प्रयास है कि हमारे समाज के जो भी वंचित लोग हैं उन तक भी परमात्मा की इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं का लाभ पहुंचे और वो भी अपने जीवन को सशक्त बनाएं, अपने जीवन को ऊंच और श्रेष्ठ बनाएं। अब अध्यक्ष अंजना मैडम जी हमारे मध्य से छुट्टी लेना चाहते हैं, तो मैं आदरणीय चक्रधारी दीदी जी और सुदेश दीदी से निवेदन करती हूँ आपका शॉल पहना करके और विद्यालय का प्रसाद दे करके सम्मान करेंगे। आपके भी आगे के कार्यक्रम बने हुए हैं। अंजना मैडम जी का बहुत बहुत आभार हम इसलिए भी व्यक्त करते हैं क्योंकि बहुत कम समय में हमने सिर्फ दो दिन पहले ही आपको निमंत्रण दिया और इतने कम समय में भी अपना निमंत्रण स्वीकार करके आप हमारे बीच में पहुंचे। विशेष विशेष आपको इसके लिए अभिनंदन है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। और अभी हमारी इस सम्मेलन की अध्यक्षा हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय सुदेश दीदी जी। अच्छा, सभी मेहमानों का शॉल पहना करके दीदी सम्मान कर रहे हैं। हम जोरदार करतल ध्वनि से सहयोग देंगे। परम आदरणीय सुदेश दीदी जी वर्तमान में जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं, आप ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर हैं, आप वर्तमान में यहीं ज्ञान सरोवर में ही निवास करते हैं। आपने पूर्व के 50 वर्षों तक अपनी सेवाएं लंदन में स्थित अपने ग्लोबल कॉरपोरेशन हाउस में प्रदान की हैं और इसके साथ साथ जर्मनी और यूरोप के जो भी सेवा केंद्र हैं उनकी भी आप डायरेक्टर हैं। दिल्ली से आप विद्यालय के संपर्क में आए, उस समय आप विद्यार्थी थे, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और 1957 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। दिल्ली में अनेक सेवा केंद्र खोलने के आप निमित्त बने और उस समय जो ब्रह्मा कुमारी टीचर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुए वो आपने दिल्ली में और साथ साथ यहाँ हेडक्वार्टर में, यहाँ माउंट आबू में भी आपने वो प्रशिक्षण सभी को किया। और उसके बाद में 1974 में आपको इंग्लैंड भेजा गया, उस समय एक छोटा प्रतिनिधि मंडल यहाँ से विदेश सेवा के लिए गया था और तब से निरंतर विदेश में रहते हुए आप अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे। आपके लिए मैं कहूंगी आपके आने से बरसता है खुशियों का सावन, आपके आगमन से ही खिल उठता है सबका मन आंगन, उपस्थिति से ही आपके वायुमंडल हो जाता है पावन। सदा युवाओं जैसे उमंग उत्साह वाली हमारी दीदी जी, आपका कोटि कोटि अभिनंदन। आपकी 80 वर्ष की आयु है लेकिन इस आयु में भी आप 18 घंटे सेवाएं प्रदान करती हैं।
ओम शांति, ओम शांति। मंच पर विराजमान मेरी अति स्नेही सम्माननीय बहने तथा सभा में बैठी हुई मेरी बहने कहूं, सखियां कहूं, फ्रेंड्स कहूं, हम जिन्स कहूं, मेरी अपनी ही बहने, हम सुनते आए हैं कि अभी होड़ को छोड़ करके जीवन को मोड़ना है। जरूरी नहीं है कि सब कोई कंपटीशन करते हैं, एक साइकोलॉजी हो गई है कि अपने आप को हीन और दीन समझने लगे। ये बहुत, क्योंकि 2500 साल से ये एक प्रकार का हवा चली है अथवा लहर फैली है, जब से पुरुष समाज शास्त्र लिखने शुरू किया तो उन्होंने नारी को अधिकारी नहीं समझा, नारी को भिखारी समझा और विकार का ही साधन समझा। और फिर समाज की कुरीतियों ने, लोभ ने कुमारियों का, कन्याओं का, जो कन्या पूजनीय जैसी जो कन्या दिव्यता का रूप, उस कन्या का मान नहीं। वो कन्या जन्म लेवे तो खुशी नहीं मनाते, अफसोस करने लगते हैं, ये किसने किया, ये माताओं ने किया, अपना अपमान अपने आप करना शुरू किया। घर में कुमारी आई है, कन्या आई है, लक्ष्मी आई है, वो रूप ना देख करके समाज की कुरीतियों के कारण अथवा दहेज की प्रथा के कारण अथवा समाज की मांग के कारण या व्यवहार, जाने वाले घर में बच्ची का व्यवहार कैसा होगा, इस डर के कारण इसलिए कहा कन्या ना आवे तो अच्छा। परंतु वास्तव में देखा जाए तो महत्व नारी के बिना तो संसार ही नहीं बनेगा। परमात्मा को भी नारी चाहिए। पुरुष सृष्टि नहीं रचता है, रचना का पुरुष कहा जाता है रचता, परंतु रचना तो माता से होती है। जन्म देने वाली, जीवन देने वाली माता होती है। तो मैं ये कहूंगी मेरी मीठी प्यारी बहनों, दो तीन बातें सिर्फ ध्यान रखने योग्य है। पहली बात है, फिर से अपने स्वमान को जागृत कीजिए। स्वमान को मान चाहिए नहीं, न मान चाहिए, न कोई अपमान चाहिए, न अभिमान चाहिए, परंतु स्वमान यानी स्वयं को मानना शुरू कीजिए कि आप कौन है। आप ऑर्डिनरी नहीं है, आप शिव शक्ति हैं। जिन शक्तियों की आप पूजा करते हैं, जिन देवियों की हम वंदना करते हैं, जिनका हम विशेष उत्सवों पर आवाहन करते हैं, जिनके दिनों में हम नवरात्रे रख करके व्रत रखते हैं, वो कोई और देवियां नहीं थी, वो आकाश से उतरी नहीं थी। दिखाते ऐसे हैं कि वो उतर आई आकाश से या धरती से प्रकट हुई। वो तो एक पोएटिक भाषा अथवा आर्टिस्ट की भाषा या ड्रामेटिस्ट की भाषा है, शास्त्रों में इस प्रकार से दिखाया है। पर वास्तव में आप ही वो शिव शक्तियां हैं जिनको आह्वान करना है, अपनी वो शक्तियों का, अपने ही गुणों का, अपने ही दिव्य संस्कारों का। कहते हैं कि नारी लक्ष्मी है, शादी होके आई तो लक्ष्मी घर में आई, बोलते ऐसे हैं। लक्ष्मी किसके पास आएगी? नारायण होएगा तो लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी होगी तो नारायण मिलेगा। अब ना लक्ष्मी रही ना नारायण रहे तो घर क्या हो गया? कलह क्लेश वाला, लक्षण खत्म हो गए। नारी को कुलक्ष्मी कहना शुरू कर दिया, नर दरिद्र नारायण बन गया, तो सृष्टि नरक बन गई, दुनिया दुख धाम बन गया, संसार दुख का संसार बन गया। तो फिर से सुख का संसार बनाना है तो नारी शक्ति को, अपने स्वरूप को पहचानना है। हम ऑर्डिनरी नहीं है, आप वही सरस्वती हैं जिनके पास विद्या का वरदान था, अथवा ये कहें कि बुद्धि की देवी थी। हर एक आत्मा वास्तव में ये नारी भाव पहले मिटाना है। मैं स्त्री हूं तो देह का भान आने से जो अपने आत्मा में, अपने में असली दिव्य संस्कार समाये हुए हैं। आत्मा तो न स्त्री है न पुरुष है, आत्मा तो दिव्य शक्ति है। तो आप दिव्य शक्ति हैं, आप ऑर्डिनरी नहीं है, आप साधारण नहीं है, आप एक एक नारी लक्ष्मी स्वरूप हैं, सरस्वती स्वरूप है, दुर्गा स्वरूप है, काली स्वरूप है, परंतु एक बात डर अथवा कमजोरी, मैं क्या करूं, मेरा पति ऐसा मिला है ना मुझे, मैं क्या करूं, मेरी सास ऐसी है ना, मैं क्या कर सकती हूं, वो नंद इतना ईर्ष्या रखती है ना, मैं क्या कर सकती हूं, मुझे तो कोई मौका ही नहीं मिलता है, मुझे तो सारा दिन चक्की पीसनी पड़ती है, मैं अब इस बकरे की बलि चढ़ानी है, तो काली बन करके ये बकरीपन की बलि चढ़ानी है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ क्योंकि मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, मुझे किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, मेरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा तो दिव्य हूँ, मैं आत्मा अलौकिक हूँ, मैं आत्मा विशेष हूँ, क्यों कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, और जब मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ तो कमजोरी मेरे में कहाँ से आई, ये कमजोरी बीमारी है, इस बीमारी को खत्म करके जाना है, बीमारी अच्छी नहीं लगती है, बीमारी से खुद भी परेशान हो जाते हैं, दूसरे लोग भी परेशान हो जाते हैं, तो ये कमजोरी और डर एक बीमारी है, अगर इसको बीमारी समझेंगे तो ऑटोमेटिकली इससे बचने का लक्ष्य सामने आएगा, हम सर्वशक्तिवान की संतान, हाँ बीमारी आई है विकारों के कारण, कमजोरी आई है अपने ही अज्ञानता के कारण, अधीनता के कारण भी आई, क्योंकि साइकोलॉजी इस प्रकार की हो गई, जो पुरुषों ने कहना शुरू कर दिया वो तो पीटने लायक है, मारो थप्पड़, मानती नहीं है तो लगाओ जुत्ती, तो ढोल बजाओ ढोल की तरह, और बिल्कुल कविताएं लिख दी, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इन सबको मारना चाहिए, नारी ने भी समझा मार ही खानी है, क्यों मार खानी है, किस लिए मार खाऊं, क्योंकि अपने आप को हीन और दीन समझा है तो मार खाना भी एक रस्म रिवाज हो गया, नहीं वास्तव में हम आत्माएं अपने आप के स्वमान में टिके, आत्मिक बल में टिके, और वो आत्मिक बल हर एक आत्मा में है, पुरुष में भी है और नारी में भी है, और श्री लक्ष्मी जी तो चार भुजा वाली दिखाई है, महालक्ष्मी है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, जैसे आपने ब्रजमोहन भाई ने बताया कि विष्णु जी का कंबाइंड रूप लक्ष्मी नारायण है, तो मां लक्ष्मी जी का भी लक्ष्मी और विष्णु जी का कंबाइंड रूप है, तो हम आत्मा साधारण नहीं है, हम आत्माओं ने देह को धारण किया है तो हमने अपने आप को एक दायरे में एक लिमिटेड में रख भाव में रख दिए, अब शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, चाहे स्त्री का है चाहे पुरुष का है, शरीर में समझ नहीं है, शरीर में बुद्धि नहीं है, ब्रेन है पर बुद्धि नहीं है, दिल है पर भावना नहीं है, फीलिंग नहीं है, कर्म इंद्रियां हैं पर कैरेक्टर नहीं है, शरीर जड़ है, और मैंने सिर्फ अपने आप को शरीर रूप में ही देखा तो क्या हुआ, मेरी जो चैतन्य शक्ति थी वो धीरे 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 जड़ होती गई, और उसके हिसाब साथ बुद्धि भी जड़ होती गई, इसलिए मुझे चैतन्य, मैं बुद्धिवानों की बुद्धिवान, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, और परमपिता परमात्मा अब फिर से ब्रह्मा द्वारा वो ज्ञान देने के लिए आए हैं, समझ देने के लिए आए हैं। बच्चे तुम साधारण नहीं हो, तुम विशेष आत्माएं हो, तुम्हारे द्वारा ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, माताओं के द्वारा ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, और उससे सबसे पहली बात है बुद्धि का विकास, बुद्धि की दिव्यता। इसीलिए हमको नशा है, स्वमान है, हम ब्रह्मा कुमारी हैं। ब्रह्मा कुमारी हैं क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा सृष्टि की आदि, मध्य और अंत का ज्ञान दे रहे हैं और स्मृति दिला रहे हैं कि तुम कौन हो। तुम आदि देव आदि देवी की संतान हो, तो तुम्हारे में तो दिव्यता है, भ्रष्टाचार की कोई साधन नहीं है, तुम आत्माएं शिव शक्तियां हो। परंतु आज की परिस्थिति में चाहे धन के जरूरत के हिसाब से, चाहे फैशन के नाम से, और चाहे थोड़ा समाज में इसी बहाने नहीं चलो मॉडल बन जावे तो मेरा फोटो सब जगह दिखाई पड़ेगा, उसमें नारी ने अपने चरित्र को बेचना शुरू कर दिया। ये किसकी कमजोरी है? ये कमजोरी अपनी है जो हर जगह नारी का कोई वो एडवर्टाइजमेंट का साधन थोड़ा ही है। वो एडवर्टाइजमेंट होगा टायर का, वो टायर में वुमन बैठी क्या कर रही है? छोटी मोटी बातों की वुमन का फर्ज है। मतलब पुरुषों ने एक खिलौना बना लिया और नारियों ने खिलौना बन के खेलना शुरू कर दिया। क्यों? कि अपने स्वमान की स्वमान को नहीं संभाला, अपनी जीवन को नहीं संभाला। फैशन हुआ तो प्रदर्शन, प्रदर्शनी अपने आप अपने चित्रों को प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कहाँ रहा स्वमान? वो जो देवी थी, वो जो पवित्रता की देवी थी, जिनके मंदिर में जाकर के एकदम पवित्रता की शक्ति मांगते थे, वो नारी आज क्या बन गई है? घर घर क्या बन गया है? तो हम माताओं को अपने घर में अपने स्वर वातावरण को ठीक करने का है। सृष्टि बदलनी है तो स्वयं को बदलना है, दूसरा कोई शक्ति देने वाला नहीं है। शक्तिकरण सशक्तिकरण, पुरुषों से सशक्तिकरण नहीं लेना है। मंगते नहीं है हम, आप कोई भिखारी नहीं हो, आप तो अधिकारी हो, आप तो दाता हो, आप तो शक्ति स्वरूप हो। तो जब अपने स्वमान में स्थित होंगे तो अहंकार नहीं है, पर दिव्य गुणों का इमर्ज करके उस बीज को पानी देना है। बीज है परंतु पानी नहीं दिया है, धीरे धीरे कीड़े ने बीज खा लिया है और या ईर्ष्या की अग्नि में भुन गए है। अब वो भुना हुआ बीज उगता नहीं है, कीड़े ने खा लिया है, इच्छा होते भी फल नहीं देता है। तो मुझे आत्मा में जो बीज है चैतन्य, मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं कल्याणकारी हूँ, मैं तो सारी दुनिया का कल्याण करने वाली हूँ। मुझे कौन देगा भाई ना सशक्तिकरण? मुझे अपना सशक्तिकरण, अपने आप को शिव शक्ति समझ करके पहली बात है विजडम, ज्ञान की शक्ति अपने में भरनी है। जब ज्ञान मिला कि मैं कौन हूँ, लाइट जग गई, तो लाइट अंधेरे से कभी फाइट नहीं करती है। लाइट ने मेहनत की क्या? लाइट ने मेहनत की अंधेरे भगाने की? कोई मेहनत नहीं की, जग गई, वाह सारे कमरे में रोशनी हो गई। तो ये दीवा तो जगाया भाई ओपनिंग के ख्याल से, आप सभी लाइट हो जो न बुझने वाली लाइट हो, सदा ही जगती जागती ज्योत हो, आप ज्योता वाली माता हो, ज्योता वाली माता की पूजा होती है, आप जागती ज्योत हो, तो यहाँ से अपने इस स्वरूप को लेकर के जाओ, विद्या की देवी हो, ज्ञान की गंगा हो, बहते रहो, कूड़ा किचरा बिखर के बह जाएगा, सागर में चल पड़ा जाएगा, साधारण नहीं हो, असाधारण हो, विशेष हो, क्यों कि शिव की शक्ति हो। तो ये मंत्र पक्का कर लो, मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मैं शिव की शक्ति हूँ, और शिव की शक्ति विश्व कल्याण करती है, परंतु मुझे पहले अपना कल्याण करना है, अपने स्वमान में टिकना है, अभिमान से स्वमान में नहीं, स्वयं को मान के कि मैं कौन हूँ, स्वमान, मान मांग नहीं, इज्जत मांग नहीं, पर इज्जत अपने स्वमान में टिक जाओ। और मैं जब अपने स्वमान में टिकी हूँ तो स्वाभाविक रीति से आत्मिक बल जागृत होता है, स्वभाव है मेरा, सच्चा भाव यही है कि मैं शिव शक्ति बन के रहूं। तो मुझ आत्मा में पहली पहली शक्ति परमात्मा ज्ञान की शक्ति जागृत करता है, उस ज्ञान से परमात्मा के साथ संबंध, जो टूटा हुआ संबंध था वो जुट जाता है, वो नहीं जुटता है। कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, आरती करते हैं, व्रत करते हैं, परंतु वो एक इच्छा पूर्ण करने के लिए करते हैं, कुछ कुछ ना कुछ मांगने के लिए करते हैं, वो भी नहीं करेंगे कुछ श्राप ना लग जावे डर से करते हैं। अब उसने मिक्सचर कुछ और हो गया तो वह रिजल्ट नहीं निकलता, इसीलिए समझ के अपनी ज्योत जगानी है और ज्ञान का घृत अपने में डालते चले जाना है, संबंध परमात्मा से जोड़ना है। तो जब योग युक्त आत्मा हो जाती है तो बंधन मुक्त हो जाती है, युक्त योग युक्त हो जाती है, शक्ति स्वरूप बन जाती है। तो आप शिव की शक्तियां जितना जितना अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़ेंगे उतना उतना आप में आत्मक बल बढ़ेगा, उस आत्मिक बल से बच्चों में बल भरेंगे, उसी भावना से भोजन शुद्ध बनाएंगे। तो बस अभी आज तो दो बातें ही ध्यान में रखना, मैं सिर्फ ये शरीर रूपी खिलौना नहीं हूँ, मैं ये डॉल नहीं हूँ, मैं एक शिव शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, शुद्ध स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, निर्भय स्वरूप हूँ, और मैं बकरी को आज बलि चढ़ा के जाने। ओम शांति।
आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत थैंक्स, और मैं सभी बहनों को कहूंगी कि हम दीदी से जरूर वादा करें, ये आश्वासन दें कि हम स्वयं को मजबूर नहीं समझेंगे, कमजोर नहीं समझेंगे, क्या करूं कैसे करूं, नहीं, स्वयं को मजबूत बनाएंगे। और जैसा कि आपने कहा कि मैं शिव शक्ति हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति हूं, मैं लाइट हूं, हम ऐसा समझेंगे, जो ऐसा समझते हैं कि हम दीदी के इन वचनों को पालन करेंगे वो हाथ उठाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में मुझ अकेले ने कोई परिवर्तन कर लिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हम विश्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं। लेकिन हम जो भी परिवर्तन करते हैं उसका फर्क पड़ता है। हम देखते हैं बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई, वो किसी एक ने ही शुरू की, हमारा भारत देश आजाद हुआ, महात्मा गांधी को ये संकल्प आया जब अंग्रेजों ने उनका अपमान किया कि मुझे भारत को इन अंग्रेजों से आजाद करना है, और फिर उन्होंने वो दृढ़ता और हिम्मत रखी तो धीरे धीरे फिर सबका सहयोग उनको मिला। तो ऐसे ही जब हम हिम्मत रखते हैं, चाहे हम परिवार में हैं, समाज में हैं, कोई भी नवीनता हम लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, उसका प्रभाव वो हमारे आसपास वालों पर पड़ता है और वो भी सहयोगी बन जाते हैं, उनको भी प्रेरणा मिलती है। तो इसीलिए कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझें कि हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, हमसे क्या परिवर्तन होने वाला है। और अब अंतिम वक्ता के रूप में हमारे मध्य हैं श्रीमती अरुणा संगेवार, जो डिप्टी कलेक्टर हैं नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से। आपने एमए किया है, एलएलबी और एमएड आप हैं, और आप अपने बहुमूल्य विचार हम सबके समक्ष रखेंगे। बहन अरुणा संगेवार जी, जिनके लिए मैं कहूंगी सीप को मोती मिले तो और क्या चाहिए, रात को चांदनी जगे तो और क्या चाहिए, और आपके वचन हमें सुनने को मिले तो और क्या चाहिए।
प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विद्यालय विश्वविद्यालय के इस पवित्र ज्ञान सरोवर में आमंत्रित मंच पर सभी आदरणीय बहन जी, आदरणीय दादी जी, अभी 3 घंटे से हम लगातार इतनी अच्छी विचार श्रृंखलाएं सुन रहे हैं कि इसमें कुछ और सुनना ये विचार श्रृंखला को तोड़ने जैसा है। और उसमें भी मेरे जैसा जो छोटे से देहात से आई हूँ, जहाँ पे अपना खुद का कुछ अस्तित्व भी उतना निर्माण भी नहीं किया, और आप जैसे सभी गणमान्य व्यक्तियों के सामने आज यहाँ पे मंच पर कुछ 2 शब्द बोलने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। सही मायने में जिसकी कोख में प्रकृति जन्म लेती है तो वो नारी कमजोर नहीं होती, वो अधिकाल से सक्षम ही है। आज सभी जो पहले कुछ वक्तव्य हुए हैं उसमें भी यही अधोरेखित किया है कि नारी जीवन एक सक्षम अस्तित्व है, पूरा विश्व उसमें समाया हुआ है, वो विश्व रूपी है। मगर जब हम बहुत निचले स्तर पे काम करते हैं तो ये जो विचार है, ये विचार हर नारी के पास होते हुए भी उसका जो सहज वापर है वो नहीं कर सकती। सक्षम होना जैसे सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, वैदिक स्तर पे या भावनिक स्तर पे ये उसकी पूरी रचना है। मगर जब सक्षमता का असलियत में जो निजी जिंदगी में उसको यूज करना है, तब वो कहीं ना कहीं दब जाती है, कहीं ना कहीं उसको बाधाएं पड़ती है। तो जब समाज सक्षम करना है तो पूरा कंसंट्रेशन नारी के ऊपर न रख के परिवार में जब हम काम करते हैं, हम जब महिलाएं बन के यहाँ पे उपस्थित है तो पूरा परिवार सक्षम करना जरूरी है, न कि खाली कंसंट्रेशन नारी पे हो। क्योंकि अब जब देहातों में रहते हैं तो वहां पे पूरा समाज ड्रग एडिक्ट हो रहा है, जिसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा है। कहीं हमने नहीं देखा कि 50% महिलाएं कभी एडिक्शन में नहीं आती, कुछ अपवादात्मक परिस्थितियां छोड़ दें मगर एडिक्शन नहीं है, काम का उतना पूरा बर्डन उनको लेना पड़ता है। और इसमें पूरा संस्कारी करना, परिवार संभालना, अपना काम करना, सबका आदर सम्मान करना, ये सब बर्डन में वो जब दब जाती है तो फिर सक्षमीकरण का कुछ मायना वहां पे नहीं रहता और वो पूरा ऐसे ओढ़ लेती है अपने बलबूते पे, तो उसमें पूरा लक्ष्मी आती है, सरस्वती आती है, दुर्गा माता भी संचार करती है, पर इतना बर्डन वो क्यों सहली? उसको भी एक सहज सुंदर अपना जीवन जीने की भी एक चाह है, वो चाह भी उसको वहां पे रहना जरूरी है, उसको देना जरूरी है। तो ये जैसे कि हम पूरी प्रकृति है, पूरी प्रकृति की नींव ही महिला है, नारी है, तो हमने ही वो जो विचार है यहाँ से हम लेके जाएंगे कि पूरा जो परिवार है उसको भी हम सक्षम बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे लड़कियों को भी संस्कार देना है तद्वत अपने लड़कों को भी उतना ही ताकत से हमें संस्कारित करना है, जबकि वो अपने पूरे महिला वर्ग का सम्मान करना सीखे और महिला वर्ग खुद का भी सम्मान करना सीखे। आज मैंने बहुत अच्छे विचार यहाँ से सुने हैं। फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ, मेरी दादी यहाँ आया करती थी, मेरी नानी भी यहाँ आया करती थी, अब दोनों भी नहीं रहे, मगर 1994 में फिफ्थ में वो यहाँ पे आते थे। और बहुत जब से ब्रह्म कुमारी आश्रम में आने की इच्छा थी, आज वो पूरी हो गई और इतने बड़े विचार मंच के सामने दो बोल बोलने के भी चांस मिल गया। मेरी लैंग्वेज मराठी है, हिंदी में मैं पहली बार यहाँ पे कुछ प्रस्तुत कर रही थी, तो ये यहाँ के ज्ञान सरोवर से ये कुछ बूंदे समेट के लेके जाएंगे। और हमारा जो निजी प्रशासन है, शासन जो हम कुछ काम करते हैं निचले स्तर पे, निश्चित ही ये भावना ये आपका जो संदेश है, हम जितना भी हमारा 100% दे सकते उतना प्रयास करेंगे और ये मंजर को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। इतने अच्छे अच्छे विचार सुनने का शायद पहला ही मौका था, इसलिए थोड़ा गदगद हो गई। आप सभी का सम्मान करते हुए मेरे ये दो शब्द मैं यहाँ समाप्त कर देती हूँ। जय हिंद, जय महा।
बहुत धन्यवाद अरुणा जी का, आपने अपने दिल के भाव इतने सुंदर शब्दों में व्यक्त किए। आदरणीय सुदेश दीदी जी हमारे मध्य से प्रस्थान करेंगे और अभी हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हैं। आप राजयोग के विषय में सुन रहे हैं, बीच बीच में राजयोग का महत्व आपको बताया गया, कैसे आध्यात्मिकता हमें अपने जीवन को परिवर्तन में लाने में मदद करती है। तो राजयोग शांति प्राप्ति का सर्वोत्तम विधि है, शांति मन की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है जो हमें तनाव, भय, चिंता जब नहीं होती है तब हम जो सुख की अनुभूति करते हैं वो शांति है। तो हम महसूस करते हैं कि शांति हमको कोई बाह्य साधनों से नहीं मिलती है, लेकिन ये तो हमारे मन की श्रेष्ठ भावनाओं से हम अनुभव करते हैं। तो अभी मैं माला बहन जो मुंबई सायन सेवा केंद्र पर लगभग 50 से भी अधिक वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, आप महाराष्ट्र के महिला विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और महाराष्ट्र में आप अनेक प्रभागों की रैलियों का आयोजन और कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं और आपका ये सौभाग्य रहा है कि पिताश्री ब्रह्मा बाबा की जो बहू रहे दादी ब्रजेंद्रा दादी, उनकी व्यक्तिगत सेवा में समीप रहने का आपको अवसर मिला। तो आपसे अनुरोध है कि उस राजयोग का कुछ क्षणों के लिए हमें अनुभव कराएं ताकि हम उस आत्मिक शांति का अनुभव कर सकें। और उसके पश्चात ये कार्यक्रम समाप्त होगा, तो आपको शाम के कार्यक्रम की भी सूचना दे देते हैं। शाम को 5 बजे आपको यहाँ हारमनी हॉल में पहुंचना है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर सेशन, पैनल सेशन आपके लिए रहेगा और मैं अनुरोध करती हूं कि कोई भी सेशन को मिस ना करे। और उसके बाद रात्रि में आपके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम 8-8:30 के बीच में यहां पुनः हार्मनी हॉल में रहेगा।
ओम शांति। अभी हम सभी ने बहुत अच्छे अच्छे प्रेरणादायक वचन सुने। सबसे पहले तो आदरणीय मंच सभा में उपस्थित हमारी प्यारी बहनें तथा भाई, हम सभी इच्छुक है कि किस प्रकार से मेडिटेशन करें। आज विश्व परिवर्तन के लिए हम सभी का, चाहे भाई हो चाहे महिलाएं माताएं हो, सभी को स्व परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। और स्व परिवर्तन के लिए हमारे अंदर मूल्यों की आवश्यकता है और मूल्यों के लिए राजयोग सीखना बहुत जरूरी है। राजयोग एक बहुत सरल योग है। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों के संबंध में सरल रीति से याद करती है और उन्हें उस प्यार की महसूसता होती है, प्राप्ति होती है, इसी प्रकार से ईश्वर के भी हम सब बच्चे हैं। हम गाते हैं, तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो ईश्वर के साथ हमारा संबंध होने से उनसे हमें जरूर प्राप्ति होती है, क्योंकि परमात्मा स्वयं प्रेम के सागर है, शांति के सागर है, दया के सागर है, सर्वशक्तिवान है। तो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से यह सभी गुण सभी शक्तियां अपने में आने लगती है और फिर हमारे अंदर वो शक्ति आने से मानसिक हमारी वृत्ति बदलती है, सबके लिए शुभ भावनाएं होती है, हमारे दृष्टि में स्नेह भाव रहता है, वाणी में मधुरता होती है और कर्मों में श्रेष्ठता होती है और जीवन हमारा सुंदर अलौकिक बन जाता है। और हम स्वयं बनने से हमारे घर में वो प्रभाव पड़ता है और हम बदलने से घर बदलता है और वास्तव में घर बदलने से ही सारा विश्व बदलता है। तो अब हम थोड़ी झलकी मेडिटेशन की देखेंगे और आप अनुभव भी करेंगे। तो अभी हम सब सतर्क होके बैठेंगे, थोड़ा स्ट्रेट होके बैठेंगे। अभी हम एक बहुत सुंदर रूहानी प्यारी यात्रा पर हम चलेंगे, जीवन की यात्रा सफल करने के लिए आंतरिक मन की यात्रा की बहुत जरूरी है। चलते हैं हम आंतरिक विश्व में, जो हमारा स्वयं का एक वतन है, एक दुनिया है। बाहर सभी बातों को मर्ज कर, किनारे कर, हम अपने आप के लिए एक दृश्य स्वयं के लिए सामने लाए। सोचिए कि मेरे इस विश्व जगत में मैं कौन हूं, तो सामने से एक दृश्य दिखाई देगा और वही हमारा जवाब कि मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। सितारे को सामने देखते हुए स्वयं में ये महसूस करो। कि मैं आत्मा इस मस्तक में, विराजमान हूँ। मुझ आत्मा में दिव्यता समाई हुई है। मैं आत्मा स्वयं प्रकाशित हूँ। पवित्रता की शक्ति अब मुझ आत्मा की संपूर्ण शरीर में समा रही है। और समा करके अस्वस्थता नष्ट होकर मैं अपने आप को स्वस्थ फील कर रही हूँ। न मानसिक बीमारी है, न शारीरिक बीमारी है। मुझ आत्मा में दिव्य गुण, दिव्य शक्तियाँ उनके वाइब्रेशंस मेरे चारों तरफ फैल रहे हैं। उसका ओरा बन गया है। अब मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा महसूस कर रही हूँ। अब मुझ आत्मा में सशक्तिकरण करने की हिम्मत आ गई है। मेरा घर एक पवित्र और शांति के वातावरण से संपन्न है। इस सांसारिक दुनिया से, इस आवास की दुनिया से मुझ आत्मा का एक बहुत सुंदर स्थान है जहाँ हम सभी आत्माएं निवास करती है। इसको ब्रह्मलोक शांति धाम कहा जाता है। परमात्मा के सानिध्य में हमें सर्वगुण सर्वशक्तियां धीरे धीरे मुझ आत्मा में समा रही है। अनंत शांति का अनुभव हो रहा है। यही मुझ आत्मा के लिए बहुत बड़ा विश्राम है। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद शांति और सुख का बना रहे। बस मैं यही परमात्मा से इच्छा रखकर पुनः इस धरा पर, इस शरीर में अपने स्थान पर संपूर्ण रूप से दिव्यता के साथ इस संसार को देख रही हूँ। सारा विश्व मेरी पावरफुल स्मृतियों के साथ अपनी शुभकामनाएं भेजती हूँ। सारा विश्व का भला हो, सब सुखी रहे, सब शांति का अनुभव करे। भगवान के आशीर्वाद मुझे इस शुभ भावनाएं देने के लिए तैयार रखे। परमात्मा मेरे पिता है, बस मैं उन्हें बड़े प्यार से बाबा कहती हूँ। आपको बड़ा धन्यवाद है तो आज ने आप हमको सही रास्ते पर चलने की दिशा दे दी है। सदा आप हमारे साथ रहना और मैं एक सशक्त महिला बनकर जाऊंगी। ओम शांति शांति शांति।
और इस शांति अनुभूति के साथ ही हम हॉल से उठेंगे, प्रस्थान करेंगे और आप अभी भोजन के लिए जा सकते हैं। ओम शांति।